आगे सबक देखिए भाई, मतन देखिए। खातिमा, अज्जा उल उलूमी सलासतुन अल मौजूआतु वही अल्लती यु तलबु फिल इल्मी अन आराज़ हज़ातियती वल मबादी वही हुदूदुल मौजूआती व अज्जाइहा व आराज़िहा व मुकद्दिमातुन बय्यिनतुन औ माखूज़तुन यब्तनी अलैहा क़ियासातुल इल्मी والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم। अच्छा, तो ये किताब का आखिरी हिस्सा है भाई। इसका उनवान मुसन्निफ ने खातिमा रखा, खातिमा। और इसके अंदर याद रखिए वो अज्जाए उलूम को बयान करेंगे कि उलूम किन चीजों से मुरक्कब होता है, क्या क्या चीजें इलम के अंदर दाखिल होती हैं। तो आपको बतलाएंगे कि अज्जाए उलूम जो हैं वो तीन हैं, मौजूआत, मबादी और मसाइल। अज्जाए उलूम कितने हैं? तीन। हर इलम के अज्जा जो हैं वो तीन हैं, मौजूआत, मबादी और मसाइल। उलूम से मुराद उलूम मुदव्वना है भाई, वो उलूम जिनको मुदव्वन किया गया, जिनको जमा किया गया, जिनको कलम बंद किया गया। तो वो उलूम जिनको जमा किया गया किताबी सूरत में, वो उलूम जो हैं उनके अज्जा तीन हैं, मौजूआत, मबादी और मसाइल। दोहराएं भाई, कितनी चीजें हैं? तीन। अज्जाए उलूम तीन चीजें हैं, मौजूआत, मबादी और उस इलम के मसाइल भाई। मौजूआत किसे कहते हैं ये आपको बतलाएंगे कि मौजूआत किसी इलम के वो उमूर होते हैं जिनके आराज़े जातिया से किसी इलम में बहस की जाए। तवज्जो है, किसी इलम के मौजूआत वो उमूर होते हैं, वो चीजें होती हैं जिनके आराज़े जातिया से उस इलम के अंदर बहस की जाए, वो उस इलम का मौजू कहलाता है। जैसे इल्म नह का मौजू कलीमा और कलाम है, कलीमा और कलाम के अहवाल से उस इलम में बहस की जाती है कि कलीमा कभी मौरब होगा, कभी मबनी होगा, कभी इसम होगा, कभी फेल होगा, कभी हर्फ होगा, कभी मरफू होगा, कभी मंसूब होगा, कभी मजरूर होगा। तो कलीमा के मुख्तलिफ अहवाल से इल्म नह में बहस की जाती है। तो इसी तरह इल्म मंतिक जो है इसका मौजू मुआर्रिफ और हुज्जत हैं, यानी वो मालूम तसव्वुरात जो हमें मजहूल तसव्वुर तक पहुंचा दें, और इसी तरह वो मालूम तस्दीकात जो हमें मजहूल तस्दीक तक पहुंचा दें, वो इल्म मंतिक का मौजू हैं। तो किसी इलम का मौजू वो उमूर होते हैं, वो चीजें होती हैं जिनके आवारिज़ ज़ातिया से उस इलम में बहस की जाए। आवारिज़ ज़ातिया यानी उस चीज के जो मखसूस अहवाल होते हैं, यानी वो अहवाल जो उस चीज के साथ खास होते हैं, वो अहवाल जो उस चीज के साथ खास होते हैं वो उसके आवारिज़ ज़ातिया हैं। तो किसी इलम का मौजू किसे कहते हैं? जिसके आवारिज़ ज़ातिया से उस इलम में बहस की जाए। फिर याद रखना ये आवारिस दो किस्म पर हैं भाई, आवारिज़ जातिया और आवारिज़ गरीबा। पहले तफसील समझ लें भाई, ये बातें मैं पहले भी किताब के शुरू में जिक्र कर चुका हूं, दोबारा समझ लें। याद रखिए, एक है जौहर और एक है सिफत। जौहर वो है जिसका अपना अलग वजूद हो, जैसे जैद है उसका अपना अलग खारिज में वजूद है। तो जैद क्या है? जौहर। तो ये जो चीजें आपको नजर आती हैं ये सब जौहर हैं। ये जैद ये भी जौहर है, इसका अपना अलग वजूद है, इसको कहेंगे कायम बिज़ात, यानी खुद अपनी जात के एतबार से ये कायम है, इसका वजूद है, ये अपने वजूद में किसी और चीज का मोहताज नहीं। या जैसे इसी तरह दरख्त है, दरख्त का अपना एक अलग वजूद है, पत्थर है उसका अपना एक अलग वजूद है। इसी तरह ये जो जो कुछ आपको दिखाई देता है हर चीज का अपना अलग वजूद है, इनको कहते हैं जौहर। ये अपने वजूद में किसी दूसरी चीज यानी किसी महल के मोहताज नहीं। जबकि कुछ चीजें जो हैं वो सिफात होती हैं, उनका अपना अलग वजूद नहीं होता, वो अपने वजूद में महल की मोहताज होती हैं। जैसे सखावत है, देखो जैद सखी है, तो यह सखावत जैद की सिफत है। जैद है तो इस सखावत का भी वजूद है, जैद नहीं तो इस सखावत का भी वजूद नहीं है। या जैसे शुजात बहादुरी, बहादुरी जो है जुर्रत, यह जैद की सिफत है, जैद है तो जैद की शुजात भी है, जैद नहीं तो जैद की शुजात भी नहीं। तो जैद जो है वह कायम भी जात है, उसका अपना अलग वजूद है, जबकि सिफत उसका अपना अलग वजूद नहीं होता। उसके लिए कोई मौसूफ चाहिए जिसके साथ वह कायम हो, मौसूफ के बगैर इसका अपना अलग वजूद नहीं हो सकता। या जैसे ये रंग हैं चीजों के, सफेद, सुर्ख, नीला, पीला, मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ रंग हैं, याद रखो ये रंग जो हैं ये सिफत हैं। ये कपड़ा सफेद है, ये सफेदी इसकी सिफत है, ये दीवार सफेद है, ये सफेदी इसकी सिफत है, कोई फूल है वो सफेद है, सफेदी उसकी सिफत है भाई। तो फूल है या वो दीवार है तो वो सफेदी भी है जो उसके साथ कायम है, और अगर वो जौहर नहीं, वो चीज नहीं, तो उस सिफत का भी अपना अलग कोई वजूद नहीं है। मसलन कपड़ा है, आप कपड़े को जला दें, कपड़ा खत्म हो जाएगा, तो उसकी जो सफेदी सिफत थी वो भी खत्म हो गई। आप ऐसा कर सकते हैं कि कपड़े को जला दें और उसकी सफेदी अलग बाहर रह जाए? या ऐसा होता है जैद मर जाए और उसकी सखावत अलग होकर बाकी रह जाए? नहीं, ये सिफत जो होती है इसका अपना अलग कोई वजूद नहीं होता। इसके लिए कोई महल चाहिए, ये जो मौसूफ है इसको इसका महल कहते हैं। क्या कहते हैं? महल, यानी वो महल, वो जगह जिसके साथ ये कायम है, जिसकी ये सिफत है, वो महल है तो सिफत भी है, वो महल नहीं तो सिफत भी नहीं। जैसे जैद की सिफत है शुजात और सखावत, तो जैद इस सखावत का महल है, ये महल है तो ये वाली सखावत भी है, ये महल नहीं तो ये सखावत भी नहीं है। तो वो चीजें जिनका अपना अलग वजूद होता है उनको जौहर कहते हैं और वो कायम बेजात होती हैं, वो अपने वजूद में किसी महल की मोहताज नहीं। जबकि दूसरी किस्म जो है वो सिफात हैं, सिफात का अपना अलग कोई वजूद नहीं होता, वो अपने वजूद में महल की मोहताज हैं। कोई महल है जिसके साथ वो कायम है तो इन सिफात का भी वजूद है, अगर वो महल नहीं तो इन सिफात का भी कोई वजूद नहीं है। और तो ये जो महल है इसको कहते हैं मारूज, और ये जो सिफत है इसको कहते हैं आरिस। आरिस का माना जो किसी चीज के साथ को पेश आ जाए, किसी चीज के साथ लग जाए। देखो ये जो सखावत है ये जैद के साथ लाहिक है, जुड़ी हुई है, तो वो चीज जिसके साथ जुड़े उसको क्या कहते हैं, यानी मौसूफ, उसको मौसूफ को क्या कहते हैं, मारूज, और सिफत को क्या कहते हैं, आरिस। आरिस या आरस भाई, आरस यानी सिफत, रा पर फतहा है, आरज भाई। तो एक है मारूज और एक है आरिज। मारूज जो है उसका अपना अलग वजूद होता है, वो अपने वजूद में किसी महल का मोहताज नहीं, जबकि आरज जो है वो अपने वजूद में महल की मोहताज है। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद याद रखना, ये जो आरिज जो है किसी मारूज को जो लाहिक होती है, इसमें बाज़ औकात कोई वासिता होगा और बाज़ औकात कोई वासिता नहीं होगा, कोई वास्ता नहीं होगा। मसलन देखो, आप किश्ती में बैठे हुए हैं और वो किश्ती चल रही है, तो किश्ती मुतहर्रिक हुई और किश्ती के वास्ते से जो उसमें बैठा हुआ इंसान है वो भी मुतहर्रिक है, तो वो इंसान भी मुतहर्रिक है, तो हरकत उस इंसान की सिफत हुई, लेकिन किसके वास्ते से, किश्ती के वास्ते से। या कोई शख्स गाड़ी में बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है, तो वो इंसान तो साकिन है लेकिन इस वक्त हरकत उसकी सिफत है, किसके वास्ते से, गाड़ी के वास्ते से। बात समझ में आ गई। तो कभी कभार ये आरिज जो है मारूज को जो लाहिक होता है, दरमियान में वासिता आता है, जैसे इस मिसाल के अंदर जो किश्ती और गाड़ी का वासिता आया और उसके वास्ते से वो इंसान भी मुतहर्रिक है। या दूसरी मिसाल ले लें, जैसे आप चाबी ताले में घुमाते हैं तो चाबी हरकत करती है, और किसके वास्ते से, हाथ के वास्ते से, हाथ हरकत करता है, हाथ उस चाबी को घुमाता है तो चाबी भी घूम जाती है। तो ये हरकत चाबी की सिफत हुई, किसके वास्ते से, हाथ के वास्ते से, हाथ हरकत कर रहा है तो चाबी भी हरकत कर रही है। तो ये जो आरिज मारूस को लाहिक होता है उसकी सिफत बनता है, इसमें कभी वास्ता होगा और कभी वासिता नहीं होगा। कभी वासिता नहीं होता, जैसे सखावत जैद की सिफत है, भाई सखावत जैद की सिफत है और दरमियान में कोई वासिता नहीं। और कभी दरमियान में वासिता होता है, जैसे गाड़ी के अंदर कोई शख्स बैठा हुआ है और गाड़ी की हरकत की वजह से वो भी मुतहर्रिक है, या जैसे चाबी को आप घुमाते हैं तो वो हाथ की हरकत की वजह से चाबी भी मुतहर्रिक है भाई। फिर ये जो वासिता है कभी खुद भी उस सिफत के साथ मौसूफ होता है और कभी खुद उस सिफत के साथ मौसूफ नहीं होता। जैसे जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं या किश्ती में बैठे हैं और किश्ती चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो किश्ती में बैठा हुआ इंसान भी मुतहर्रिक है, तो ये हरकत उस इंसान की सिफत है, किसके वास्ते से, किश्ती और गाड़ी के वास्ते से, और वो वास्ता खुद भी उस सिफत के साथ मौसूफ हो रहा है, वो गाड़ी और किश्ती वो भी क्या है इस वक्त मुतहर्रिक है, तो वो सिफत मारूज के साथ साथ जो वासिता है उससे भी लाहित होती है, वो भी उस सिफत के साथ मौसूफ होता है। या जैसे आपने चाबी को हरकत दी तो हरकत चाबी की सिफत बनी, किसके वास्ते से, हाथ के वास्ते से, और हाथ भी देखो हरकत के साथ मौसूफ है, हरकत उसकी भी सिफत है, तो कभी वो वासिता भी सिफत के साथ मौसूफ होता है और कभी वो वासिता सिफत के साथ मौसूफ नहीं होता। जैसे रंगरेज है, याद रखो एक है रंगसाज एक है रंगरेज। रंगसाज वो है जो रंग बनाता है, रंगरेज वो है जो चीजों पर रंग चढ़ाता है। मसलन आप बाजार में कपड़ा ले जाते हैं और वो कपड़ा रंगने वाला रंगरेज जो है वो उसको मुख्तलिफ रंग देता है, जो रंग आप उससे कहते हैं, तो वो शख्स क्या है जो कपड़े पर रंग चढ़ाने वाला है, रंगरेज भाई। अब देखो देखो कपड़ा, आप सफेद कपड़ा उसके पास ले गए और आपने कहा इसको सुर्ख रंग दो, उसने उस कपड़े को सुर्ख रंग दिया, तो ये देखो सुर्ख रंग इस कपड़े की सिफत बन गया, और किसके वास्ते से, रंगरेज के वास्ते से, लेकिन रंगरेज खुद इस सिफत के साथ मौसूफ नहीं, खुद वो सुर्ख रंग का नहीं हुआ, उस पर यह सुर्ख रंग नहीं चढ़ा। तो कभी जो है वास्ता उस सिफत के साथ मौसूफ होगा और कभी खुद वास्ता उस सिफत के साथ मौसूफ नहीं होगा। तो इस एतबार से उलमाए मंतिक जो हैं वो आरिज और मारूज के दरमियान वासिता होगा या वासिता नहीं होगा उसकी कई किस्में बनाते हैं और बतलाते हैं कि दो किस्म की सिफात हैं, कुछ आवारिज जातियां हैं और कुछ आवारिज गरीबा हैं भाई, आवारिज जातियां और कुछ आवारिज गरीबा हैं भाई। ये आप लिख लीजिए, ये आपके काम आएगा भाई। ये मैं शुरू में भी लिखवा चुका हूं लेकिन वहां जरा और अंदाज में लिखवाया था, यहां जरा और अंदाज में लिख लें, बात इंशाल्लाह और वाजे हो जाएगी जी। सबसे ऊपर लिखिए भाई मौजूआत, मौजूआत किसी इलम के मौजूआत, किसी इलम के मौजूआत वो उमूर होते हैं, वो उमूर होते हैं, किसी इलम के मौजूआत वो उमूर होते हैं जिनके आवारिज़े जातिया से, जिनके आवारिज़े जातिया से, जिनके आवारिज़े जातिया से यानी मखसूस अहवाल से, यानी मखसूस अहवाल से उस इलम में बहस की जाए, उस इलम में बहस की जाए। लिख लिया, फिर सुन ले मौजूआत किसी इलम के मौजूआत वो उमूर होते हैं जिनके आवारिज जातिया यानी मखसूस अहवाल से उस इलम में बहस की जाए। नीचे अलग बे उन्वान दें, आवारिज़े जातिया, आवारिज़े जातिया वो आवारिज हैं, आवारिज़े जातिया वो आवारिज हैं जो अपने मारूस को, जो अपने मारूस को बिला वासिता, बिला वासिता या उसके अम्रे मुसावी के वास्ते से, अमर मुसावी के वास्ते से लाहिक हों, लाहिक हों। बात समझ में आ गई। अवारिस जातीय किसे कहते हैं? वो अवारिस जो अपने मारूस को बिला वासिता, यानी दरमियान में कोई वासिता ना आए, बिला वासिता लाहिक हों, या किसी अमरे मुसावी के वास्ते से लाहिक हों। भाई जी आगे अलग सतर में लिखिए, आरिज बिला वासिता, आरिज बिला वासिता, इसको आरिज बिजात, आरिज बिला वासिता उनवान था भाई, उससे आगे लिखें, इसको आरिज बिजात, इसको आरिज बिजात और आरज अव्वली भी कहते हैं, और आरज अव्वली भी कहते हैं। जैसे ताज्जुब आरिज है, जैसे ताज्जुब आरिज है इंसान को बिला वासिता, जैसे ताज्जुब आरिज है इंसान को बिला वासिता, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को मुताज्जिब बनाया है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को मुताज्जिब बनाया है। नीचे लिखिए अलग सतर, आरिज बवास्ता मुसावी की, आरिज बवास्ता मुसावी की दो किस्में हैं, दो किस्में हैं। लिख लिया, आरिज बवास्ता मुसावी की दो किस्में हैं। नंबर एक, आरिज बवास्ता जुज़ मुसावी, आरिज बवास्ता जुज़े मुसावी, आरिज बवास्ता जुज़े मुसावी। जैसे नुतुक नून त्वाब त्वाज़ा और काफ दो नुक्तों वाला, जैसे नुतुक इंसान की सिफत है, जैसे नुतुक इंसान की सिफत है, बवास्ता उसके जुज नातिक के, बवास्ता उसके जुज नातिक के, और ये जुज इंसान का अमरे मुसावी है, और ये जुज इंसान का अमरे मुसावी है, यानी जिस पर नातिक सादिक आता है, यानी जिस पर नातिक सादिक आता है उस पर इंसान सादिक आता है, उस पर इंसान सादिक आता है, और जिस पर इंसान सादिक आता है, और जिस पर इंसान सादिक आता है उस पर नातिक सादिक आता है, उस पर नातिक सादिक आता है। नंबर दो भाई अलग सतर, नंबर दो, आरिज बवास्ता खारिज मुसावी, आरिज बवास्ता खारिज मुसावी। जैसे ज़िहक भाई, ज़िहक ज़ाद हा और छोटा काफ, जैसे ज़िहक इंसान की सिफत है, इंसान की सिफत है बवास्ता मुताज्जिब के, बवास्ता मुताज्जिब के, और मुताज्जिब इंसान का अमरे मुसावी है, और मुताज्जिब इंसान का अमरे मुसावी है। और मुताज्जिब इंसान का अमरे मुसावी है और इंसान की हकीकत और माहियत से खारिज है, और इंसान की हकीकत और माहियत से खारिज है। आगे अलग उनवान दीजिए, आवारिज़े गरीबा, आवारिज़े गरीबा। वो आवारिस जो अपने मारूज को अव्वलन और बिज़ात या अमरे मुसावी के वास्ते से लाहिक ना हो। आगे लिखिए, आवारिज़े गरीबा की चार सूरतें हैं। आवारिज़े गरीबा की चार सूरतें हैं, यूं लिख लें, चार किस्में हैं। नंबर एक, आरिज बवास्ते जूज़े आम। नंबर एक, आरिज बवास्ते जूज़े आम, लिख लिया, आरिज बवास्ते जूज़े आम, जैसे माशी इंसान की सिफत है बवास्ते हैवान के जो इंसान का जूज़े आम है, यानी ये जूज और हैवानात में भी पाया जाता है, नंबर दो, आरिज बवास्ते खारिज आम, जैसे हरकत आरिज होती है अबयज़ को, बवास्ते जिस्म के, और जिस्म अबयज़ की हकीकत से खारिज है, नंबर तीन, आरिज बवास्ते खारिज अखस, लिख लिया, आरिज बवास्ते खारिज अखस, जैसे ज़हक और नुतक लाहिक होते हैं हैवान को बवासिते इंसान के और इंसान अखस है और इंसान अखस है और हैवान की हकीकत से खारिज है, अखस है और हैवान की हकीकत से खारिज है। नंबर चार, आरिज बवास्ते खारिज मुबायन, आरिज बवास्ते खारिज मुबायन, आरिज बवास्ते खारिज मुबायन, जैसे हरारत आरिज होती है पानी को, जैसे हरारत आरिज होती है पानी को, बवास्ते आग के, बवास्ते आग के यानी नार के। आगे अलग सतर लिखिए। बाज़ मुताखिरीन ने, बाज़ मुताखिरीन ने आरिज बवास्ते जुज़े आम, आरिज बवास्ते जुज़े आम को भी, आरिज बवास्ते जुज़े आम को भी आवारिज जातिया में शुमार किया है, को आवारिज जातिया में शुमार किया है। मगर हक यह है, मगर हक यह है कि यह आवारिज गरीबा में से है, मगर हक यह है कि यह आवारिज गरीबा में से है। बहस मुकम्मल हुई भाई। अब देखिए इसको समझ लीजिए भाई। सबसे पहले इसमें मैंने आपको बतलाया कि किसी इलम के मौजूआत वो उमूर होते हैं जिनके आवारिज जातिया या यूं कहें अहवाल मखसूसा से किसी इलम में बहस की जाए। तवज्जो है, वो अहवाल जो उसी चीज के साथ खास हैं उनसे उस इलम में बहस की जाती है। ऐसे अहवाल से बहस नहीं की जाती जो इसमें भी पाए जाते हैं और चीजों में भी पाए जाते हैं। तो किसी इलम में जो मौजू हो उसके आवारिज जातिया यानी मखसूस अहवाल के बारे में बहस की जाती है। अब आवारिज जातिया किसे कहते हैं, मैंने आपको बतलाया आवारिज जातिया वो हैं जो किसी चीज को आरिज होते हैं बिला वास्ता या किसी अमरे मुसावी के वास्ते से, दरमियान में कोई वासिता ना हो। जैसे ताज्जुब इंसान को लाहिक होता है बिला वास्ता, इंसान की इंसान को अल्लाह ने मुताज्जिब बनाया है, इंसान को अल्लाह ने मुताज्जिब बनाया है। याद रखिए इंसान मुदरिक है, अल्लाह ने उसको मुदरिक बनाया है। मुदरिक इदराक का क्या माना, इलम, इलम। इदराक का माना जानना, वो इदराक करता है चीजों का, चीजों का इलम उसको हासिल होता है। तो उसका इदराक कभी तसव्वुर होता है और कभी तस्दीक। अगर उस इदराक के अंदर हुक्म ना हो तो वो तसव्वुर है, अगर उस इदराक के अंदर इज़ान ना हो तो वो तसव्वुर है, और अगर इज़ान हो तो वो तस्दीक है। तो तफसील मैंने बयान की थी, बतलाया था कि इदराक और इलम का एक ही माना है। इलम का माना भी जानना, इदराक का माना भी जानना। तो हम जो चीजें जानते हैं यानी जो चीजें हमारे जहन में आती हैं, हमारे अकल में आती हैं, कभी तो उनमें कोई निस्बत होती ही नहीं। मसलन सिर्फ जैद का तसव्वुर या बकर का तसव्वुर, और कभी एक ही चीज होगी, कभी ज्यादा चीजें लेकिन दरमियान में कोई निस्बत नहीं। जैसे जैद, अमर, बकर, सबका आपने तसव्वुर किया और दरमियान में कोई निस्बत नहीं है। और कभी निस्बत होती है लेकिन बात पूरी नहीं होती, निस्बत तकयीदी होती है, निस्बत तामा नहीं होती। जैसे मुरक्कब तौसीफी में होता है और मुरक्कब इजाफी के अंदर होता है। और कभी निस्बत तामा होती है लेकिन कलाम क्या होता है, इंशाई, वो भी किसकी किस्म में से, तसव्वुर की किस्म में से। और कभी निस्बत तामा खबरी होती है लेकिन वो वहम, शक या तखयील के कबील से होता है, वो भी तसव्वुर है। जबकि जन जो है वो तस्दीक की किस्म है। तो तस्दीक के अंदर इज़ान होता है, इंसान एक चीज को मान लेता है कि ऐसा है, या उसका गालिब गुमान होता है कि ऐसा है, तो ये तस्दीक है। तो तसव्वुर और तस्दीक किसके किस्म है, इदराक, तो अल्लाह ने इंसान को मुद्रिक पैदा किया है, वो चीजों का इदराक करता है। जब मुख्तलिफ चीजों का इदराक करता है तो अनोखी और अजीब चीजों का भी इदराक करता है, और जब कोई अनोखी और अजीब चीज देखता है तो उसको ताज्जुब लाहिक होता है, और फिर उस ताज्जुब की वजह से उसको हंसी आ जाती है, जिसे ज़िहक कहते हैं। तो इंसान क्या है? ज़ाहिक है, हंसने वाला है, उसको हंसी आती है, लेकिन यह हंसता क्यों है? किसकी वजह से? ताज्जुब की वजह से। वो जब किसी अमरे गरीब का इदराक करता है उसको ताज्जुब लाहिक होता है, और उस ताज्जुब की वजह से उसे फिर हंसी आ जाती है। तो इंसान को अल्लाह ने मुताज्जिब बनाया है कि किसी अमरे गरीब का इदराक करेगा तो इसको क्या लाहिक होगा? ताज्जुब। तो यह ताज्जुब इंसान की सिफत है बिला वासिता। इंसान को अल्लाह ने बनाया ही क्या है? मुताज्जिब है वो, जब किसी अमरे गरीब का इदराक करता है तो उसे ताज्जुब लाहिक होता है, और ये ताज्जुब इंसान को लाहिक होता है बगैर किसी वास्ते के, दरमियान में कोई वास्ता नहीं है। तो ये वो आरिस है जो बिला वास्ता इंसान को आरिस होता है। और यह भी मैंने आपको बतलाया कि वो आरज जो बिला वास्ता किसी चीज को आरिस हो उसको आरिस बिज़ात और आरज़े अव्वली भी कहते हैं। यह ताज्जुब इंसान को क्या है? इंसान के लिए आरिस है बिज़ात, भाई इंसान की जात को ही यह आरिस होता है, दरमियान में कोई वास्ता नहीं। नीज इसको आरज़े अव्वली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरज़े अव्वली, क्योंकि इसमें कोई वासिता ही नहीं है, तो गोया वो आरज अव्वलन ही आकर इसको लाहिक हुआ है, इसको आरिस हुआ है, दरमियान में कोई वासिता नहीं। तो आरिस बिज़ात कह लें या आरिस अव्वलन कह लें, एक ही बात है। तवज्जो है? तो ये जो आरिस हो बिला वास्ता के उसको क्या कहते हैं? आरिस बिज़ात, या इसी तरह आरज अव्वली उसको कहते हैं। तो दरमियान में कोई वासिता नहीं, वो जो आरज है बिज़ात उसी चीज को लाहिक हो रहा है, या यूं कहें अव्वलन उसी को आरिज हो रहा है, दरमियान में कोई वासिता नहीं। और कभी दरमियान में वासिता होता है, और वो फिर वासिता या वो अमरे मुसावी होगा या अमरे अखस होगा या आम होगा या मुबायन होगा। तवज्जो है जी। तो आवारिस जातिया की बात मैं कर रहा था। आवारिस जातिया वो हैं जो किसी चीज को लाहिक हो बिला वास्ता या किसी अमरे मुसावी के वास्ते से। तो जैसे ताज्जुब जो है इंसान को लाहिक होता है बिला वास्ता, तो इसको क्या कहेंगे? आरिस बिज़ात और आरज़े अव्वली कहेंगे। और कभी दरमियान में वास्ता आएगा, लेकिन वह वास्ता अमरे मुसावी होगा। अच्छा, अमरे मुसावी का क्या माना? यानी वो मारूज और वो चीज मुसावी हैं, जिस पर मारूज सादिक आता है उस पर वो वास्ता भी सादिक आता है, और जिस पर वास्ता सादिक आता है उस पर मारूज भी सादिक आता है। जैसे जैसे इंसान और मुताज्जिब, हर इंसान क्या है? मुताज्जिब है। तो जो इंसान है वो मुताज्जिब भी है, और जो मुताज्जिब है वो इंसान भी है। जिस पर इंसान सादिक आएगा उस पर मुताज्जिब भी सादिक आएगा, और जिस पर मुताज्जिब सादिक आएगा उस पर इंसान भी सादिक आएगा। तो ये मुसावी हैं एक दूसरे के। और ये मुताज्जिब देखो इंसान की हकीकत से खारिज है। इंसान की हकीकत तो हैवान नातिक है, उसके अंदर ताज्जुब की कोई कैद जिक्र नहीं। ये तो ताज्जुब वास्ता बनता है, और इसके वास्ते से देखो ज़िहक इंसान की सिफत बन गई। तो ज़िहक इंसान को लाहिक होता है किसके वास्ते से? मुताज्जिब होने के वास्ते से। और ये मुताज्जिब होना इंसान की हकीकत से खारिज है और अमरे मुसावी है। मुताज्जिब क्या है? इंसान के अमरे मुसावी है। जो इंसान है वो मुताज्जिब है, और जो मुताज्जिब है वो इंसान है। तो ज़िहक इंसान को लाहिक होता है किसके वास्ते से? ताज्जुब के वास्ते से। और ताज्जुब क्या है? इंसान के लिए अमरे मुसावी है, यानी मुताज्जिब इंसान के लिए अमरे मुसावी है। और कभी वो अमरे मुसावी जो होता है जुज होता है। मुताज्जिब तो इंसान की हकीकत से खारिज था, लेकिन कभी वो अमरे मुसावी उस चीज की हकीकत में दाखिल होता है। जैसे नुतुक सिफत बनती है इंसान की नातिक के वास्ते से। नुतुक का माना है बोलना, बोलना, यूं कहें कुल्लियात का इदराक करना। इंसान नातिक है, ये बोलना भी इसमें दाखिल, और मुद्री के कुल्लियात है। इंसान क्या करता है? कुल्लियात का इदराक करता है। तो बहरहाल यहां नुतक का माना करने, बोलना, गुफ्तगू करना, इंसान को अल्लाह ने नातिक बनाया है। तो नुतक इंसान की सिफत है। नुतक क्या है? इंसान की सिफत है, और किसके वास्ते से? नातिक के वास्ते से। इंसान नातिक है इसलिए नुतक उसकी सिफत बनी। तो नुतक इंसान की सिफत है किसके वास्ते से? नातिक के वास्ते से। और यह नातिक इंसान का जुज है और उसका अमर मुसावी है। इंसान की हकीकत क्या, हैवान नातिक, तो देखो नातिक इंसान का जुज है और इंसान का अमर मुसावी है और कोई चीज नातिक नहीं। जो इंसान है वो नातिक और जो भी नातिक होगा वो क्या होगा, इंसान होगा। तो जो अमर मुसावी है कभी वो जुज होता है और कभी खारिज। तो वो अरज जो किसी चीज को लाहिक हो अमरे मुसावी के वास्ते से वो भी आवारिज़े जातिया में दाखिल है और वो अमरे मुसावी कभी दाखिल होता है यानी जुज होता है एक शय का और कभी उससे खारिज होता है। जुज की मिसाल जैसे नुतुक सिफत है इंसान की, किसके वास्ते से, नातिक के वास्ते से, और नातिक इंसान की हकीकत में दाखिल है। और कभी वो अमरे मुसावी महरूज की हकीकत से खारिज होता है जैसे ज़हक इंसान की सिफत बनता है ताज्जुब के वास्ते से और ताज्जुब क्या है, इंसान की हकीकत और माहियत से खारिज है। जबकि इसके अलावा बाकी आवारिज जो हैं वो आवारिज गरीबा कहलाते हैं और आवारिज गरीबा वो हैं जो किसी चीज को यानी कि मारूस को लाहिक होते हैं बवास्ते आम के या अखस के या मुबायन के। तवज्जो है, कितनी सूरतें, तीन सूरतें हैं भाई। फिर इस तीन में फिर सुने, आवारिज गरीबा वो हैं जो किस मारूस को लाहिक होते हैं किसी आम के वास्ते से या अखस के वास्ते से या मुबाइन के वास्ते से, और फिर आम के वास्ते से जो लाहिक होते हैं जो आवारिज वो फिर दो किस्म पर हैं, वो वासिता या तो दाखिल होगा यानी जुज होगा या खारिज होगा। तवज्जो है, तो चार सूरतें यहां बन जाती हैं। तो आवारिज गरीबा की तारीफ मैंने आपको क्या लिखवाई कि आवारिज गरीबा वो आवारिज हैं जो किसी चीज को आरिज होते हैं किसके वास्ते से, आवारिज गरीबा जो किसी चीज को अव्वलन और बिज़ात और किसी अमरे मुसावी के वास्ते से आरिज और लाहिक न हो वो है आवारिज गरीबा। और वो कितनी किस्म पर, चार किस्म पर, क्योंकि वो आरिज होंगे या तो बवास्ते आम के या बवास्ते अखस के या बवास्ते मुबाइन के, और जो बवास्ते आम के आरिस होते हैं वो फिर दो किस्म पर हैं, या वो आम या तो जुज होगा या खारिज होगा। तो कुल चार किस्में बन गई। तो वो आरिस जो बवास्ते जुज आम के हो, वो आरिस जो बवास्ते जुज भी है और आम भी है, जैसे कि माशी इंसान की सिफत है हैवान होने के वास्ते से। इंसान माशी है, अपने पैरों पर चलता है, ये यूं कहें इंसान मुतहर्रिक बिल इरादा है। इंसान क्या है, मुतहर्रिक बिल इरादा है, और ये हैवान के वास्ते से, क्योंकि इंसान की हकीकत क्या है, हैवान नातिक, तो इसका एक जुज हैवान है। और हैवान किसे कहते हैं, जिस्मुन नामिन हसासुन मुतहर्रिक बिल इरादा, जिस्म भी हो, नामी हो यानी बढ़ने वाला हो, हसास हो, चीजों को महसूस करता है, और मुतहर्रिक बिल इरादा हो भाई। तो ये चार चीजें हैवान में होती हैं। तो इनमें एक चीज क्या है, मुतहर्रिक बिल इरादा, मालूम है जो भी हैवान होगा वो मुतहर्रिक बिल इरादा। और इंसान की हकीकत क्या, हैवान नातिक, तो इंसान का एक जुज क्या हुआ, हैवान, और हर हैवान क्या होता है, मुतहर्रिक बिल इरादा, तो इंसान भी मुतहर्रिक बिल इरादा है। और यह मुतहर्रिक बिल इरादा इंसान किसके वास्ते से है, हैवान के वास्ते से, और यह हैवान क्या है, इंसान का जुज आम है, ये इंसान का जुज़े आम, यानी सिर्फ इंसान में नहीं पाया जाता, ये जुज और हैवानात में भी पाया जाता है। एक जुज है इंसान का नातिक, वो इंसान का अमरे मुसावी है, और दूसरा जुज है हैवान, और ये इंसान का जुज़े आम है जो इंसान के अलावा और हैवानात में भी पाया जाता है। तो वो आरिज जो बवास्ता जुज़े आम के हो, जैसे हरकत बिल इरादा, इंसान को ये सिफत आरिज होती है हैवान के वास्ते से जो इंसान का जुज़े आम है। और कभी कभी जो आरिज होगी वो बवास्ता खारिज आम के होगी, वो सिफत आरिज होगी किसके वास्ते से, खारिज आम के वास्ते से, जैसे जैसे हरकत लाहिक होती है अबियज को बवास्ता जिस्म होने के। याद रखो हर जिस्म जो है वो काबिल हरकत और काबिल सुकून है, यानी वो हरकत को भी कबूल कर लेता है और सुकून को भी कबूल कर लेता है, यानी साकिन हो जाता है। तो हर जिस्म क्या है, काबिल हरकत भी है और काबिल सुकून भी है। तो लिहाजा अबयज, अबयज कोई चीज जो सफेद हो, सफेद हो। और अभी मैंने बताया कि जो रंग हैं इनका अपना अलग वजूद नहीं, ये किसी चीज की सिफत बनते हैं। तो अबयज कोई चीज होगी, उसकी सिफत सफेदी होगी। तो अबयज जो है, अबयज उसका जिस्म होगा, क्या होगा, जिस्म होगा। जब उसका जिस्म है और हर जिस्म क्या है, काबिल हरकत और सुकून है, तो ये हरकत अबयज यानी सफेद चीज की सिफत बनी किसके वास्ते से, जिस्म होने के वास्ते से। और जिस्म ये अबयज से आम है, जिस्म सिर्फ सफेद होता है, यह हर रंग का हो सकता है, हर रंग का जिस्म हो सकता है। तो जिस्म आम है, जिस्म क्या है, अबयज से आम है। तो ये देखो अबयज की सिफत बनी हरकत। एक याद रखो, एक है हरकत बिल इरादा, एक है वैसे हरकत। हैवानात जो हैं वो मुतहर्रिक बिल इरादा होते हैं, यानी अपने इरादे से हरकत करते हैं। आप जिस तरफ आपका दिल करता है आप उस तरफ चलते हैं या अपने हाथ को हरकत देते हैं। तो इंसान और हैवानात वो मुतहर्रिक बिल इरादा हैं। और एक सिर्फ हरकत है वो आम चीजों में भी हो सकती है। मसलन आप पत्थर को हरकत देते हैं तो वो हरकत करेगा। तो ये हरकत तो है लेकिन हरकत बिल इरादा नहीं है भाई। तो लिहाजा अबयस वो मुतहर्रिक होता है, हरकत उसकी सिफत बनती है, लेकिन किसके वास्ते से, जिस्म के वास्ते से। और ये जिस्म क्या है, अबयस से आम है और उसकी हकीकत से खारिज है, उसकी हकीकत से खारिज है। तो ये आरिज है बवास्ता खारिज आम के। और कभी कोई सिफत आरिज होगी बवास्ता बवास्ताए खारिज अखस के, बवास्ताए खारिज अखस के। जैसे देखो जहक और नुतुक सिफत बनती है हैवान की। इंसान जाहिक भी है और नातिक भी है, और इंसान हैवान भी है। तो गोया यूं कहो कि बाज हैवान नातिक भी हैं और जाहिक भी हैं। तो हैवान की सिफत नुतुक और जहक बन गई, लेकिन किसके वास्ते से, इंसान के वास्ते से भाई। और इंसान क्या है, हैवान से अखस है भाई, और हैवान की हकीकत से खारिज है भाई। क्या हैवान की जब तारीफ करते हैं तो उसमें इंसान की, इंसान का जिक्र आता है? हैवान की तारीफ तो क्या है, जिस्मुन नामिन हसासुन मुतहरिक बिल इरादा। देखो इसमें कोई इंसान की हकीकत इसके अंदर नहीं आती भाई। तो नुतुक और जहक हैवान की सिफत बनती है किसके वास्ते से, इंसान के वास्ते से। तो ये आरिस है बवासते खारिज अखस के। और कभी आरिस होगा बवासते खारिज मुबाइन के, यानी अमरे मुबाइन के जरिए। जैसे हरारत सिफत बनती है पानी की आग के वास्ते से। पानी को आग पर गर्म करें तो वो पानी गर्म हो जाता है। तो हरारत पानी की सिफत बन गई, लेकिन किसके वास्ते से, आग के वास्ते से। और आग और पानी ये दोनों एक दूसरे के मुबाइन हैं। जो पानी है वो आग नहीं और जो आग है वो पानी नहीं। किसी जगह ये दोनों जमा होते हैं, एक ही चीज पानी भी उसको कहें और आग भी कहें, ऐसा है नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के मुबाइन है। तो देखा कभी जो वासिता होगा वो आम होता है, कभी अखस होता है और कभी मुबाइन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब याद रखना किसी इलम के अंदर मौजू के आवारिज़े जातिया से बहस की जाती है। और आवारिज़े जातिया वो हैं जो किसी चीज को आरिज होते हैं बिला वास्ता या किसी अमरे मुसावी के जरिए। तो ये उसके मखसूस अहवाल हैं, इनके बारे में उस इलम में बहस की जाएगी। और बाकी जो आवारिज गरीबा हैं, याद रखो ये हकीकत, ये देखने में तो यूं लगता है शायद ये मारूस के अहवाल हैं, लेकिन आप गौर करें तो आपको इलम होगा ये दरअसल वासिते के अहवाल हैं, मारूस के अहवाल नहीं। तो ये जो आवारिज गरीबा जो होते हैं ये दरअसल उस वासिते के अहवाल होते हैं, उसके आराज होते हैं, वो मारूज के अहवाल नहीं होते। तो आवारिज जातिया क्या होते हैं, उसके मारूज के अहवाल होते हैं, इसलिए उनसे उस इलम में बहस की जाती है। उसके यूं कहें आवारिज जातिया मौजू के मखसूस अहवाल होते हैं, यानी उसी के साथ जो खास होते हैं। और किसी इलम के अंदर भी मौजू के अहवाल मखसूसा से बहस की जाती है। और अहवाल आम्मा के साथ बहस नहीं की जाती, वो तो और चीजों में भी पाए जाते हैं। और ये जो आवारिज़ गरीबा होते हैं ये दरअसल उस मौजू के अहवाल नहीं है बल्कि वासिते के अहवाल हैं। तो वो वासिता जिस इलम का मौजू होगा वहां तो उन अहवाल को जिक्र करेंगे, यहां पर जिक्र नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। मसलन मसलन एक इलम का मौजू है अबियज, एक इलम का मौजू क्या अबियज। इस इलम के अंदर आप अबियज की सिफत, अबियज की सिफत के वो मुतहर्रिक भी है तो इस मुतहर्रिक होने को की बहस नहीं करेंगे, क्योंकि मुतहर्रिक होना ये दरअसल अबियज की सिफत नहीं है बल्कि किसकी सिफत है, वो जो वासिता है यानी जिसम जो है, हर जिसम क्या होता है काबिल हरकत और काबिल सुकून। लिहाजा जिस इलम का मौजू जिसम होगा उसमें तो हरकत के बारे में बहस की जाएगी क्योंकि हरकत जिसम की सिफत है। बात समझ में आ गई। लेकिन जिस इलम का मौजू अबियस हो उसमें हरकत के बारे में बहस नहीं होगी। अच्छा, तो ये थे भाई आवारिज जातिया और आवारिज गरीबा। अब देखिए भाई किताब पर कहते हैं खातिमतुन, ऐ हाजी ही खातिमतुन, इसको खबर बना सकते हैं आप मुब्तदा के लिए, मुब्तदा हाजी ही है और खातिमा क्या है खबर है, या आप इसको मफूल बना लें इकरा फेल के लिए। इस सूरत में इस पर नसब पढ़ेंगे, इकरा खातिमतन, खातिमा पढ़िए मफूल बनेगा। या तीसरी सूरत है कि कोई तरकीब नहीं भाई, ये उनवान है, ये क्या है उनवान है, कोई तरकीब नहीं, लिहाजा ना इस पर रफा पढ़ सकते हैं ना नसब और ना जर भाई। कहते हैं अजजा उल उलूम सलासतुन, उलूम के अजजा तीन हैं, अल मौजूआतु एक मौजूआत हैं, वही अल्लती युतलबु फिल इल्मी, मेरी किताब में युतलबु है भाई, युतलबु नहीं युबहसु होना चाहिए भाई, युबहसु। कहते हैं मौजूआत जो हैं वही अल्लती युबहसु फिल इल्मी अन आराज हजातियती, मौजूआत वो होते हैं कि बहस की जाती है उस इलम में उनके आराज जातिया से, किसी इलम के मौजूआत वो चीजें हैं जिनके आराज जातिया से उस इलम में बहस की जाती है, जिनके आराज जातिया से उस इलम में बहस की जाती हो वो उस इलम के मौजूआत हैं भाई, मौजूआत। जैसे मैंने बताया इल्म नहव का मौजू क्या है कलिमा और कलाम, इल्म मंतिक का मौजू क्या है मुआरिफ और हुज्जत, इल्म तिब जो है यानी जो डॉक्टरी का इलम है उसका मौजू है बदन इंसानी, या जैसे तफसीर का मौजू है कुरान, और या जैसे इल्म हदीस का मौजू जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के अक्वाल अफाल और तकरीरात हैं भाई, और जैसे इल्म हिसाब का मौजू जो है वो अदद है अदद, और जैसे इल्म हंदसा जो है इल्म हंदसा का मौजू जो है वो मिकदार है भाई, मिकदार मिकदार मुत्तसिल भाई। बात समझ में आ रही है, एक है मिकदार मुत्तसिल एक है मुनफसिल, मिकदार मुत्तसिल वो इल्म हंदसा का मौजू है और मिकदार मुनफसिल यानी आदद आदद वो इल्म हिसाब का मौजू है। तो उलूम के अज्जा जो हैं तीन हैं भाई, और वो हैं मौजूआत मबादी और मसाए, और मैंने बताया उलूम से मुराद वो उलूम है जो मुदवन है जिनकी तदवीन की गई है यानी जिनको किताबी सूरत में जमा किया गया है यानी कलम बंद किया गया है, तमाम उलूम मुराद नहीं। तो उन उलूम के तीन अज्जा हैं भाई मौजूआत मबादी और मसाइल भाई। मौजूआत जमा लेकर आए भाई, आप कहेंगे इलम का मौजू तो एक चीज होती है, नहीं एक चीज तो जरूरी नहीं, जैसे देखो इल्म नहव का मौजू क्या है कलिमा और कलाम, इसी तरह मंतिक का मौजू क्या है मुआरिफ और हुज्जत, तो मौजूआत लेकर आए। और जबकि बाज उलूम का मौजू एक होता है या कभी मुरक्कब होता है तो जमा लेकर आए ताकि उस इलम का मौजू और इसी तरह उसके मसाइल का जो मौजू है वो भी इसमें शामिल हो जाए। जो आगे मसाइल आएंगे भाई इस इलम के मसाइल होते हैं और आपको बताएंगे मसाइल उन कजियों का नाम है जो आगे जिक्र होंगे, उस इलम के अंदर जो कजिये जिक्र होंगे वो उस इलम के मसाइल हैं जो उस इलम में मतलूब होते हैं, और कजिया आप जानते हैं उसमें एक मौजू होता है और एक महमूल। जैदुन कायमुन, जैदुन क्या है? मौजू, और कायमुन महमूल। तो इस इलम के जो मसाइल हैं वो कजाया जो उस इलम में मतलूब होते हैं, जिनकी खातिर वो फन और इलम पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो इलम के मसाइल किन चीज का नाम है? उन कजियों का नाम है, और उनका भी मौजू होंगे और महमूल। तो यहां मौजूआत जमा का लफ्ज लेकर आए ताकि ये शामिल हो जाए इस इलम का जो मौजू है और उसके मसाइल का जो मौजू है सबको, भाई इस इलम का मौजू हो या इस इलम के मसाइल का मौजू, सबको शामिल हुआ कि इस इलम के अंदर ये इनके आराजे जातिया से बहस की जाती है। या जमा इसलिए लेकर आए क्योंकि मौजूआत से मुराद है मा यस्दुकु अलैहि मौजूउल इल्मी। मौजूआत से क्या मुराद है? तवज्जो से भाई, मा यस्दुकु अलैहि मौजूउल इल्मी, जिस पर इलम का मौजू सादिक आए। और वो चीजें तो जमा है, जाहिर सी बात है। जैसे इल्मे नह का मौजू क्या? कलिमा और कलाम। जी जैद भी क्या है? कलिमा। और बकर भी क्या है? कलिमा। और इसी तरह मसलन इसम भी क्या है? कलिमा। फेल भी क्या है? कलिमा। ये जो अरबी के जितने अल्फाज हैं वो क्या हैं? कलिमात हैं, और ये सब इल्मे नह का मौजू हैं। जैसे मंतिक का मौजू क्या? मुआरिफ और हुज्जत। मुआरिफ किसको कहते हैं? वो मालूम तसव्वुरात जो हमें कहां तक पहुंचाएं? मजहूल तसव्वुर तक। तो देखो मालूम तसव्वुरात जमा है या नहीं? तो इनमें से हर एक क्या है? इस इलम का मौजू है। तो मौजू हुआ या मौजूआत हो गए? हर मालूम तसव्वुर इल्म मंतिक का मौजू है, इस हैसियत से कि वो कहां तक पहुंचाए? मजहूल तसव्वुर तक। इसी तरह तमाम मालूम तस्दीकात वो क्या हुई? इल्म मंतिक का मौजू ही, इस हैसियत से कि वो कहां तक पहुंचाने वाली हो? मजहूल तस्दीक तक। भाई तो तमाम मालूम तसव्वुरात और तमाम मालूम तस्दीकात ये क्या हुई? इल्म मंतिक का मौजू। और ये एक चीज हुई या ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई। तो इसलिए कहा मौजूआत, यानी मा यस्दुकु अलैहि मौजूउल इल्मी, जिस पर मौजूउल इल्म सादिक आए। जिस पर? भाई देखो ये इधर देखिए, ये देखो ये दो तसव्वुर हैं मालूम, ये हम एक मजहूल तसव्वुर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है? इल्म मंतिक का मौजू। इसी तरह ये दो और तसव्वुर हैं, ये भी हमें मजहूल तसव्वुर तक पहुंचा रहे हैं। ये भी क्या है? इल्म मंतिक का मौजू। ये दो और तसव्वुरात हैं, ये भी कहां तक पहुंचा रहे हैं? मजहूल तक। ये भी क्या है? इल्म मंतिक का मौजू। तो इन सब पर मंतिक का मौजू होना सादिक आता है, इसलिए मौजूआत लेकर आए। ये एक तसव्वुर है या ज्यादा है? ज्यादा है। मौजूआत से क्या मुराद? दो बातें मैंने जिक्र कर दी, जमा लाए दो वजह से, या तो मौजूआत जमा इसलिए लाए ताकि इस इलम के मौजू को भी शामिल हो, और इस इलम के जो आगे मसाइल जिक्र होंगे उन मसाइल के अंदर जो मौजूआत हो जिक्र होंगे और जिनके बारे में बात की जाएगी वो भी इसमें शामिल हो। तो मौजू आम है, इस इलम का मौजू भी और इस इलम के मसाइल का भी मौजू। तो ये जमा। या मौजूआत से क्या मुराद है? मा यस्दुकु अलैहि मौजूउल इल्मी, जिस पर इलम का मौजू सादिक आ सके, और हर मालूम तसव्वुर पर सादिक आता है वो क्या है? इल्म मंतिक का मौजू है, जब वो मजहूल तक पहुंचाए। भाई तो इस एतबार से ये जमा बन गई। तो कहते हैं किसी इलम के मौजूआत वो उमूर होते हैं कि जिनके आराज जातिया से उस इलम में बहस की जाए। दूसरी चीज है मबादी। मबादी याद रखो, मबादी वो चीजें हैं जिन पर किसी इलम के मसाइल जो हैं मौकूफ होते हैं। तवज्जो है, मबादी वो चीजें हैं जिन पर किसी इलम के मसाइल मौकूफ होते हैं। वो चीजें आपको समझ में आएंगी तो उस इलम के मसाइल भी समझ में आएंगे, अगर वो चीजें नहीं समझ में आएंगी तो इलम के मसाइल भी समझ में नहीं आएंगे। तवज्जो है, मबादी किसे कहते हैं? वो चीजें जिन पर किसी इलम के मसाइल मौकूफ होते हैं। और याद रखना ये मबादी तसव्वुर की कबील से भी हो सकते हैं और तस्दीक की कबील से भी हो सकते हैं। अगर ये मबादी तसव्वुर की कबील से हुए तो इनको मबादी तसव्वुरिया कहेंगे, और अगर ये तस्दीक की कबील से हुए तो इनको मबादी तस्दीकिया कहेंगे। मबादी तसव्वुरिया भाई याद रखो वो तारीफात का नाम है। किसका नाम है? तारीफ। भाई आप जानते हैं मुआरिफ, मुआरिफ किसको कहते हैं? वो मालूम तसव्वुरात जो हमें कहां तक पहुंचाएं, मजहूल तक। मालूम हुआ मुआर्रिफ हमेशा क्या होगा, तसव्वुर होगा। क्या होगा? तसव्वुर होगा भाई। तो मबादिय तसव्वुरिया जो है वो तारीफात का नाम है। किस चीज की तारीफात? आगे आपको बतलाएंगे कि मौजूआत की तारीफ, और अगर मौजूआत मुरक्कब हों तो उनके अज्जा की तारीफ, और इसी तरह उनके आराज जो उनकी सिफात हैं उनकी तारीफ। ये सब मबादिय तसव्वुरिया में दाखिल हैं। किसके अंदर दाखिल हैं? मबादिय तसव्वुरिया में दाखिल हैं। फिर सुनो, किसी इलम के अज्जा तीन चीजें हैं। नंबर एक मौजूआत, और नंबर दो मबादी, और नंबर तीन मसाइल। मौजूआत के बारे में बतला दिया कि मौजूआत वो उमूर हैं जिनके आवारिज़े जातिया से किसी इलम में बहस की जाए, और मबादी मैंने बताया वो चीजें हैं जिन पर किसी इलम के मसाइल मौकूफ होते हैं। ये मबादी समझ में आएंगे तो मसाइल समझ में आएंगे, ये मबादी समझ में नहीं आएंगे तो मसाइल भी समझ में नहीं आएंगे। और ये मबादी जो हैं ये तसव्वुर भी हो सकते हैं और तस्दीक भी हो सकते हैं। तसव्वुर हो तो जैसे इस इलम के मौजूआत की तारीफ कि वो कहते किसे हैं, उनकी तारीफ की जाती है। अगर वो इलम के मौजू मुरक्कब है तो उसके अज्जा की तारीफ की जाती है, और उसके इसी तरह उसके आराज की तारीफ की जाती है, उसकी जो सिफात होते हैं आवारिस होते हैं उनकी तारीफ की जाती है। और मुआरिफ और तारीफ ये किस कबील से हैं? तसव्वुर के कबील से। तो ये मबादिय तसव्वुरिया हुए, और कुछ मबादी तस्दीकिया हैं जिन पर इलम के दलाइल की बुनियाद होती है। देखिए ये आगे खुद जिक्र कर रहे हैं, देखिए किताब पर कहते हैं वल मबादी वही हुदूदुल मौजूआती, और मबादी जो हैं ये मौजूआत की तारीफें हैं। हुदूद से मुराद है तारीफ भाई, मुआर्रिफ भाई। भाई आपको इल्म नह में बताया जाएगा अल कलिमतु इम्मा इस्मुन औ फ़िअलुन औ हर्फुन, के कलिमा या इसम होगा या फेल होगा या हर्फ। तो देखो ये एक कजिया है, ये एक कजिया है। इसके अंदर अल कलिमा है मौजू, और इस्मुन औ फ़िअलुन औ हर्फुन ये क्या है? महमूल है। तवज्जो है, एक जुमला में आपके सामने जिक्र करता हूं। मसलन इल्मे नह में आपको बतलाया जाता है अल कलिमतु इम्मा इस्मुन औ फ़िअलुन औ हर्फुन। अल कलिमा हुआ मुबतदा और आगे पूरी क्या है? खबर। यानी अल कलिमा हुआ मौजू और आगे महमूल है, तो अल कलिमा हुआ मौजू। तो अकलिमा इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। भाई पहले हमें कलिमे के बारे में भी बताएं कि कलिमा कहते किसको हैं, तो कलिमा की तारीफ करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? तो ये है हुदूदुल मौजूआत, मौजूआत की तारीफ की जाती है। जो उस इलम का मौजू होता है या उस इलम के मसाइल के जो मौजूआत होते हैं उनकी तारीफ की जाती है। जब तारीफ उसकी पहचान होगी, उसकी पहचान होगी तो आगे उसके बारे में जो बात की जाएगी वो भी आपको समझ में आएगी। आपको अलकलीमा का पता होगा तभी आपको ये भी समझ में आएगा कि वो इसम भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है और हर्फ भी हो सकता है। अगर आपको कलीमा का पता ही नहीं है और आपको कहा जाए कि अलकलीमा तो इसमुन औ फ़िअलुन औ हर्फुन, तो बात आपको समझ में नहीं आएगी। लिहाजा मबादी के अंदर क्या किया जाता है? उस इलम के मौजू या उसके मसाइल के जो मौजू हैं उनकी तारीफात की जाती है, उनकी पहचान करवाई जाती है। तारीफ का क्या फायदा होता है? एक तसव्वुर मजहूल जो था पहले, अब वो आपको मालूम हो गया। आपको पता नहीं था कि कलिमा किसे कहते हैं, नह में तारीफ की गई अल कलिमा तो लफ्जों वुज़िआ लिमानम मुफ़रदिन, ये तारीफ की गई। अब आपको पता चल गया अच्छा कलिमा किसका नाम है, ऐसा लफ्ज है जिसमें वजा होगी, जिसको किसी माना के लिए मुकर्रर किया गया होगा और वो मुफ़रद होगा। भाई अल कलिमा तो लफ्जों वुज़िआ लिमानम मुफ़रदिन, तो कलिमा आपको तब कलिमा समझ में आया। क्या क्या चीजें मिलाई? लफ्ज को मिलाया, वजा को मिलाया, माना को मिलाया और मुफरद, ये चार तसव्वुरात को मिलाया तो आपको कलिमा का तसव्वुर हासिल हो गया, कलिमा की आपको पहचान हो गई। अब जब पहचान हो गई अब आगे चलकर आपको बताते हैं अल कलिमा तो इस्मुन औ फ़िअलुन औ हर्फुन, अब यह बात भी आपको समझ में आएगी। तो लिहाजा क्या किया जाता है मबादी के अंदर? उस इलम के जो मौजूआत होते हैं उनकी तारीफ की जाती है, और अगर उनके कोई अज्जा हो तो उनकी भी तारीफ की जाती है। कभी कभी मौजू मुरक्कब होता है, कभी किसी इलम का मौजू मुरक्कब होता है, जैसे इल्म मंतिक का मौजू क्या है, मुआरिफ और हुज्जत। देखो ये दो चीजें हैं, दोनों चीजें इल्म मंतिक का मौजू हैं, तो मुआरिफ की अलग तारीफ करनी पड़ेगी और हुज्जत की अलग तारीफ करना पड़ेगी। तो मौजूआत की तारीफ की जाती है मबादी के अंदर, इसी तरह उनके अजज़ा की भी तारीफ की जाती है। या दूसरी मिसाल ले लें, जैसे इल्म उसूल फिका, इल्म उसूल फिका जो है इसका मौजू अदिल्ला शरईया है, शरई दलीलें भाई। और शरई अदिल्ला आप जानते हैं चार चीजें हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजमा और कियास, ये चार हैं अदिल्ला शरईया भाई। तो देखो इल्म उसूल फिका का मौजू जो है वो मुरक्कब है, वो मुरक्कब है। जब वो मुरक्कब है चार चीजों से, तो उनमें से हर एक की अलहदा अलहदा तारीफ करते हैं। उसूल फिका में आप पढ़ते हैं या नहीं, किताबुल्लाह की अलग तारीफ करते हैं, सुन्नत की अलग तारीफ करते हैं, इजमा की अलग तारीफ करते हैं और कियास की अलग तारीफ करते हैं। तो मबादी तसव्वुरिया में उस इलम के मौजूआत की भी तारीफ की जाती है, और अगर उस मौजूआत मुरक्कब हैं, उनके अज्जा हैं, तो अज्जा की भी क्या की जाती है, उन मबादी के अंदर उनकी तारीफ की जाती है, उनकी पहचान करवाई जाती है, और इसी तरह उनके आराज की भी पहचान करवाई जाती है, उनकी भी तारीफ की जाती है कि कलीमा कभी क्या होगा, मरफू होगा, कभी मंसूब होगा और कभी मजरूर होगा। तो बतलाते हैं कि रफा किसको कहते हैं, नसब किसे कहते हैं और जर किसे कहते हैं। देखो कलीमा की सिफत है, कभी वो क्या होगा, मरफू, कभी मंसूब, कभी मजरूर। तो रफा, नसब, जर ये कलीमा के आवारिस हैं, आराज हैं भाई, आराज जातिया। तवज्जो है, ये कलीमा के आराज जातिया हैं भाई, और इनकी भी तारीफ की जाती है भाई। या इसी तरह इल्म मंतिक का मौजू है मुआरिफ और हुज्जत, और मुआरिफ किससे मुरक्कब होता है, तसव्वुरात से, और हुज्जत किससे मुरक्कब होती है, तस्दीकात से। और ये तसव्वुर और तस्दीक जो हैं, ये फिर दो किस्म पर हैं, कभी ये बदीही होंगे और कभी नजरी होंगे। तो बदीही और नजरी होना, ये देखो तसव्वुर और तस्दीक के आवारिज में से है, किसमें से है, आवारिस में से है। तो आपको वहां इल्म मंतिक में बताते हैं बदीही किसे कहते हैं और नजरी किसे कहते हैं। तो मबादी के अंदर मबादी तसव्वुरिया जो हैं, उस इल्म के मौजूआत की भी तारीफ की जाती है ताकि उनका तसव्वुर आपको हासिल हो जाए, और अगर वो मौजूआत मुरक्कब हैं तो उनके अज्जा की तारीफ की जाती है, और इसी तरह उनके आराज की भी तारीफ की जाती है, क्योंकि आगे मसाइल में उन्हीं के बारे में बहस करनी है, उन्हीं को मौजू वगैरह बनाना है। अगर आपको इन चीजों का तसव्वुर हासिल होगा तो फिर ही आपको वो मसाइल भी समझ में आएंगे। अगर आपको रफा, नसब, जर का पता होगा तो आगे मसाइल में जाकर आपको बतलाएंगे, मसलन कि रफा जो है कभी जम्मा के साथ आता है, कभी रफा अलिफ के साथ आता है, कभी रफा वाव के साथ आता है। देखो ये बात, देखो रफा ये मौजू है और उसके आगे तफसील बयान हो रही है, तो रफे का पता होगा तो आगे आपको बाकी बातें भी समझ में आएंगी भाई। तो मबादी वो बातें जिन पर उस इलम के मसाइल का दारोमदार होता है, यानी उन पर इलम के मसाइल मौकूफ होते हैं। मबादी समझ में आएंगे तो इलम के मसाइल समझ में आएंगे, और वो मबादी दो किस्म के, या वो मबादी तसव्वुर होंगे या तस्दीक। तसव्वुर हो तो उसमें क्या क्या शामिल, उस इलम के मौजूआत की तारीफ, और उन मौजूआत के अगर अज्जा हैं तो उन अज़ा की तारीफ, और उनके आराज जातिया की तारीफ भाई। बात समझ में आ गई, देखिए किताब पर कहते हैं वल मबादी वही हुदूदुल मौजूआती, मबादी जो हैं वो मौजूआत की तारीफें हैं, व अज़ा इहा, ये अज़ा इहा, और इसी तरह आगे है व आराज इहा, इन दोनों का आतफ है मौजूआत पर। वही हुदूदुल मौजूआत, दोनों का आतफ इस अल मौजूआत पर है, और अल मौजूआत पर हुदूद का लफ्ज दाखिल हो रहा है मुजाफ, तो ये सब भी गोया हुदूद के तहत आ गए। तो गोया कलाम यूं है, सुनो भाई, वही हुदूदुल मौजूआती व हुदूदु अज्ज़ाइहा व हुदूदु आराज़िहा, और ये जो मबादी होते हैं ये इस इलम के मौजूआत की तारीफें और इसी तरह इन मौजूआत के अज़ा की तारीफें व आराजीहा और इन मौजूआत के जो आराज हैं, जो उनकी सिफात हैं, उनकी तारीफें होती हैं। व मुकद्दिमात उन और कुछ मुकद्दिमात होते हैं, मबादी तसव्वुर भी हो सकते हैं और तस्दीक भी, तसव्वुर भी हो सकते हैं मसलन मौजूआत की तारीफें या उनके अज्जा की तारीफें या उनके आराज की तारीफें, और नीज ये मबादी तस्दीक भी हो सकते हैं। तो तस्दीक हो तो वो क्या होंगे, वो बयान करने लगे हैं। वह मुकद्दिमात उन और ये मबादी कुछ मुकद्दिमात होते हैं। देखो ये मुकद्दिमात का आतफ है हुदूदुल मौजूआत पर, किस पर? तो कहते हैं इबारत गोए यूं बन गई, वल मबादी वही हुदूदुल मौजूआती, वल मबादी वही मुकद्दिमातुन और मबादी जो है वो कुछ मुकद्दिमात होते हैं। बय्यिनतुन औ माखूज़तुन, ऐसे मुकद्दिमात जो बय्यिन होते हैं, वाज़ह होते हैं, यानी बदीही होते हैं। ऐसे मुकद्दिमात यानी ऐसी तस्दीकात जो क्या होती हैं, बदीही होती हैं। औ माखूज़तुन या अखज़ की गई होती हैं, यानी के दलाइल से, किससे अखज़ की गई होती हैं, दलाइल से, मुराद है नजरी होती हैं। दलाइल से उसी चीज को अखज़ किया जाएगा जो नजरी होगी, बदीही के लिए दलील की जरूरत नहीं। तो माखूज़ा से क्या मुराद, वो मुकद्दिमात जो नजरी हों, और बय्यिना से कौन से मुकद्दिमात मुराद जो बदीही हों। तो कहते हैं मबादी वो मुकद्दिमात उन कुछ ऐसे मुकद्दिमात होते हैं, बय्यिनतुन औ माखूज़तुन जो बदीही होते हैं या नजरी होते हैं, यबतनी अलैहा क़ियासातुल इल्मी, बुनियाद होती है इन पर इलम के दलाइल की। क़ियासातुल इल्मी ऐ दलाइलुल इल्मी, क़ियास किसका नाम है, दलील का नाम है। क़ियास किसका नाम, दलील का नाम है। वो दलील है, उसको मानेंगे तो आपको उसका नतीजा भी मानना पड़ेगा। तो मबादी ऐसे मुकद्दिमात का नाम है जो बदीही या नजरी होते हैं। यबतनी अलैहा क़ियासातुल इल्मी, और उस पर बुनियाद होती है इलम के दलाइल की, यानी इलम के दलाइल उन पर मौकूफ होते हैं, इलम के दलाइल उन पर मौकूफ होते हैं, यानी उनसे इलम के मसाइल, इलम के दलाइल उनसे मुरक्कब होते हैं। ये मुकद्दिमात क्या बनते हैं, उस इलम के दलाइल बनते हैं जिनके जरिए इस इलम के मसाइल को फिर साबित किया जाता है। तवज्जो है। तो मबादी किसका नाम, वो कुछ तसव्वुरात हैं और कुछ तस्दीकात। तसव्वुरात क्या हैं, उस इलम के मौजूआत और उनके अज्जा और उनके आराज की तारीफात, और कुछ तस्दीकात हैं, वो तस्दीकात क्या हैं, कुछ मुकद्दिमात होते हैं जो बदीही भी होते हैं और नजरी भी, और उस पर उस इलम के दलाइल की बुनियाद होती है। क्या माना दलाइल की बुनियाद होती है, यानी उनसे इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं, उन्हीं से इलम के दलाइल बनते हैं। भाई बात समझ में आ गई। आगे देखिए वल मसाइलु, और तीसरी चीज जो इलम के अज्जा में दाखिल है वो मसाइल हैं। वही कजाया तुतलबु फिल इल्मी, ये ऐसे कजिए हैं। देखो कजाया नकेरा आया और तुतलबु इसके बाद फेल है, तो फेल नकेरा के बाद आए तो उसकी सिफत बनता है। वही कजाया, और ये जो मसाइल इलम होते हैं, ये कजाया, ये ऐसे कजिए होते हैं, तुतलबु फिल इल्मी जो मतलूब होते हैं इलम में, जो इलम में क्या होते हैं, मतलूब होते हैं, यानी उनको दलाइल से साबित किया जाता है उस इलम के अंदर। भाई मैंने बतलाया था नतीजे का एक नाम क्या है, मतलूब है, क्योंकि उसका इस बात मतलूब होता है, उसके लिए दलील पेश की जाती है। तो मसाइल इलम क्या होते हैं, जो उस इलम के, वो ऐसे कजिए हैं जो उस इलम में मतलूब होते हैं, यानी जिनको दलाइल से साबित किया जाता है, उन पर दलीलें पेश की जाती हैं उस इलम के अंदर भाई, और उन्हीं के लिए उस इलम को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। यूं कहो जो मसाइल होते हैं इस इलम के, वो मकसूद होते हैं। वो क्या होते हैं, वो अपनी जात के एतबार से मकसूद होते हैं। वो फन और वो इलम उसी के लिए पढ़ा और पढ़ाया जाता है कि उन मसाइल को माना जाए, साबित किया जाए भाई। तो कहते हैं वल मसाइल, मेरी किताब में अल मसाइल है भाई, यहां वो होना चाहिए भाई, वल मसाइल, क्योंकि तीसरी चीज है भाई। पहली क्या, मौजूआत नंबर दो वल मबादी और नंबर तीन वल मसाइल। तो कहते हैं वल मसाइल वहिया कजाया तू तलबु फिल इल्मी, और तीसरी चीज जो है इलम के अज्जा में से वो मसाइल हैं। वहिया कजाया तू तलबु फिल इल्मी, और वो ऐसे कजिए होते हैं जो उस इलम में मतलूब होते हैं, यानी मकसूद भी जात होते हैं, और उन्हीं की खातिर फन को पढ़ा और पढ़ाया जाता है, और उन्हीं पर दलाइल पेश करके उनको साबित किया जाता है। अब इन्होंने क्या कहा, इलम के मसाइल किसका नाम, कजियों का नाम है। किसका नाम, कजिए। और कजिए के लिए एक मौजू चाहिए और एक महमूल चाहिए, भाई मौजू चाहिए और एक महमूल चाहिए, फिर ही बात पूरी होगी। आपने पढ़ा था कजिए किसको कहते हैं, जो सिदक और किजब का एहतमाल रखता हो, और इसके अंदर जो महकुमुन अलैह है उसको मौजू कहते हैं, और जो महकुमुन बिही होता है उसको महमूल कहते हैं। जैदुन कायमुन, जैद क्या है मौजू, और कायमुन क्या है महमूल। तो ये जो इल्म के मसाइल हैं ये भी कजिए होते हैं, और आगे बताएंगे इनका मौजू ये चीजें बन सकती, ये चीजें होंगी, और इसका महमूल ये चीजें होंगी। बात समझ में आ गई। तो ये कजियों के मौजू क्या क्या चीजें होंगी ये जरा कापी पर लिख लीजिए, फिर ही आपको बात समझ में आएगी। भाई लिखिए भाई, मसाइले इलम के मौजूआत, मसाइले इलम के मौजूआत, मसाइले इलम के मौजूआत। मसाइले इलम किसका नाम, अभी बताया कजियों का नाम है। तो मसाइले इलम के मौजूआत यानी उन कजियों के जो मौजूआत हैं, लिख लिया मसाइले इलम के मौजूआत। पांच किस्म के हो सकते हैं, पांच किस्म के हो सकते हैं मसाइले इलम के मौजूआत, पांच किस्म के हो सकते हैं। नंबर एक, नंबर एक उस इलम का मौजू, उस इलम का मौजू वही मौजू होगा इन मसाइल का, वही मौजू होगा इस इलम का मौजू, वही मौजू होगा उन मसाइल यानी उन कजाया का, उन मसाइल यानी उन कजाया का। जैसे अलकलिमतु, जैसे अलकलिमतु इम्मा इस्मुन औ फिअलुन औ हर्फुन, अलकलिमतु इम्मा इस्मुन औ फिअलुन औ हर्फुन, या दूसरी मिसाल भी लिख लें, या जैसे अलकलिमतु, या जैसे अलकलिमतु इम्मा मुअरबुन औ मबनीयुन, अलकलिमतु इम्मा मुअरबुन औ मबनीयुन। नंबर दो, नंबर दो मौजू है इलम की, मौजू है इलम की कोई खास नौ जो है, कोई खास नौ यानी कोई खास किस्म, यानी कोई खास किस्म उन मसाइल का मौजू होगी, उन मसाइल का मौजू होगी। जैसे, जैसे अल इस्मु इम्मा मुअरबुन औ मबनीयुन, अल इस्मु इम्मा मुअरबुन औ मबनीयुन, या जैसे दूसरी मिसाल भी लिख लें, या जैसे अल इस्मु इम्मा मरफूउन औ मनसूबुन औ मजरूरुन, अल इस्मु इम्मा मरफूउन औ मनसूबुन औ मजरूरुन। नंबर तीन मौजूए इलम का, मौजूए इलम का कोई अरज जाती, मौजूए इलम का कोई अरज जाती उन मसाइल का मौजू होगा, उन मसाइल का मौजू होगा। जैसे, अल एराबु इम्मा, अल एराबु इम्मा लफजियन लफजियन औ तकदीरियन औ तकदीरियन औ महल्लियन औ महल्लियन। अल एराबु इम्मा लफजियन औ तकदीरियन औ महल्लियन, या जैसे दूसरी मिसाल भी लिख लें, या जैसे अर्रफ़ु इम्मा बिल हरकति औ बिल हर्फी औ बिल हर्फी। जी नंबर चार लिखिए आगे, चार नंबर उस इलम का मौजू, उस इलम का मौजू जो मुरक्कब हो, जो मुरक्कब हो अपनी किसी अरज़े जाती के साथ, अपनी किसी अरज़े जाती के साथ, वो उस फन के मसाइल का मौजू होगा, वो उस फन के मसाइल का मौजू होगा। जैसे कुल्लु कलिमतिन मुअरबतिन, कुल्लु कलिमतिन मुअरबतिन इम्मा मुनसरिफतुन औ गैरु मुनसरिफतिन, इम्मा मुनसरिफतुन सौद के साथ है मुनसरिफा भाई, इम्मा मुनसरिफतुन औ गैरु मुनसरिफतिन। लिख लिया कुल्लु कलिमतिन मुअरबतिन इम्मा मुनसरिफतुन औ गैरु मुनसरिफतिन। नंबर पांच मौजूए इलम की कोई खास किस्म, मौजूए इलम की कोई खास किस्म जो मुरक्कब हो अपने अरज़े साथी के साथ, जो मुरक्कब हो अपने अरज़े साथी के साथ वो मौजू होगी, वो मौजू होगी उस इलम के मसाइल का, उस इलम के मसाइल का। जैसे कुल्लु इस्मिन मुअरबिन, कुल्लु इस्मिन मुअरबिन इम्मा मरफूउन औ मनसूबुन सौद के साथ है, औ मजरूरुन। कुल्लु इस्मिन मुअरबिन इम्मा मरफूउन औ मनसूबुन औ मजरूरुन। या जैसे दूसरी मिसाल भी लिख लें, या जैसे कुल्लु इस्मिन मुअरबिन इम्मा मुनसरिफुन औ गैरु मुनसरिफिन। लिख लिया जी, बहस मुकम्मल हुई। इधर देखिए अब इसको जरा समझ लें भाई, इलम के मसाइल की बात आई, इन्होंने बतलाया कि इलम के मसाइल किसका नाम है, वो ऐसे कजिए हैं जो उस इलम में मतलूब होते हैं, यानी जिन पर दलाइल पेश करके उनको साबित किया जाता है और वो उस इलम का मकसूद होते हैं, यानी उन्हीं के लिए उस इलम को पढ़ा और पढ़ाया जाता है, तो वो कजियों का नाम है। और कजिए में एक मौजू होता है और एक महमूल। तो ये जो इलम के मसाइल हैं इनका मौजू क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो आपको मैंने बतलाया कि इसका मौजू जो है, इन मसाइल का मौजू पांच किस्म की चीजें हो सकती हैं। या तो इन मसाइल का मौजू वो उसी इलम का मौजू जो है वो इनका भी मौजू होगा, उस इलम का जो मौजू है वही इन कजियों का भी मौजू होगा, या उस इलम के मौजू की कोई खास किस्म जो है वो इन कजियों का मौजू होगी, या उस इलम के मौजू की कोई अरज जाती जो है वो इनका मौजू होगी। तवज्जो है उस उन मसाइल का मौजू क्या क्या हो सकते हैं, वही जो इलम का मौजू है वो इन मसाइल का भी मौजू, या उस मौजू इलम की कोई खास किस्म वो इन मसाइल का मौजू होगी, या उस मौजू इलम की कोई अरजी जो है, कोई अरजी जाती जो है वो इन मसाइल का मौजू होगी, या वो मौजू मुरक्कब होगा। वो मौजू किस चीज से? इस इलम के मौजू और उसकी किसी अरजे जाती से, उस इलम के मौजू और किसी अरजे जाती से मुरक्कब चीज जो होगी वो मौजू बनेगी उन मसाइल का। या पांचवी किस्म कि वो मौजू मुरक्कब होगा किस से? उस इलम के मौजू की कोई खास किस्म जो मुरक्कब होगी किसके साथ? अपनी अरजे जाती के साथ। तवज्जो है, फिर दोहराएं कि मसाइल का मौजू कितनी चीजें हो सकती हैं? पांच। या तो मसाइल का मौजू वही उस इलम का भी मौजू है, या मसाइल का मौजू उस इलम के मौजू की कोई खास किस्म, या मसाइल का मौजू जो है उस इलम के मौजू की कोई अरजे जाती होगी, या मसाइल का मौजू जो है उस इलम का मौजू जो मुरक्कब होगा अपनी किसी अरजे जाती के साथ यानी किसी सिफत के साथ, या इस या मौजू क्या होगा? उस इलम के मौजू की कोई खास किस्म जो मुरक्कब होगी अपनी अपनी आरज़े जाती के साथ। देखो मिसालों से और वजाहत होगी, जो मैंने मिसालें लिखवा दी। पहली किस्म क्या कि इस इलम का मौजू ही क्या होगा? इन मसाइल का भी मौजू। मसलन इल्म नह में आपको बतलाते हैं अलकलिमतु अलकलिमतु इम्मा इस्मुन औ फ़िअलुन औ हर्फुन। देखो यह मसला आपको बतलाते हैं और इसका मौजू क्या? अलकलिमा। और अलकलिमा देखो इस इलम का भी मौजू है, तो मसाइल का मौजू क्या बना जो इस इलम का मौजू? या जैसे आपको बतलाया जाता है अलकलिमतु इम्मा मौरबुन औ मबनीयुन। देखा इसमें भी मौजू क्या है? अलकलिमा है जो इस इलम का मौजू। तो मसाइल का जो कजिया है उसके अंदर मौजू कौन बना? जो इस इलम का मौजू। कभी मौजू जो होता है उन मसाइल का वो इस इलम के मौजू की कोई खास किस्म होता है। जैसे क्या मिसाल मैंने लिखवाई? अलिस्मु इम्मा मुअरबुन औ मबनीयुन। देखा इसम कलिमा की खास किस्म है और कलिमा क्या है? इस इलम का मौजू। तो इस इलम के मौजू की कोई खास किस्म, कोई खास नौ जो है वो इनका मौजू बनेगी इन कजियों का, इन मसाइल का। तो इसम क्या है? मौजू बन रहा है यहां पर। और क्या है इसम? इस इलम के मौजू की एक खास किस्म है भाई। और या तीसरी सूरत यह है कि इस इलम के मौजू का जो है कोई खास अरजी जाती वो मौजू बनेगा। इस इलम के मौजू की कोई अरज जाती वो क्या बनेगी? इन मसाइल का मौजू बनेगी। उसकी क्या मिसाल मैंने लिखवाई? अल एराब इम्मा लफ्जियन औ तकदीरियन औ महलियन। इसमें मौजू क्या? अल एराब। और एराब क्या है? इस इलम का जो मौजू है कलिमा, ये उसकी अरज जाती है, उसकी सिफत है। एराब किस पर आते हैं? कलिमे पर आते हैं। तो ये उसकी अरज जाती है और ये मौजू बन रही है। और बतलाया जा रहा है कि एराब जो है वो लफ्जी होता है या तकदीरी होता है या महली होता है। चौथी सूरत क्या है कि इन मसाइल का मौजू क्या होगा? वो मुरक्कब होगा इस इलम के मौजू और उसकी किसी अरजे जाती से। जैसे उसकी मिसाल मैंने लिखवाई कुल्लु कलिमतिन मुअरबतिन इम्मा मुनसरिफतुन अव गैरु मुनसरिफतिन। मौजू क्या? कुल्लु कलिमतिन मुअरबतिन, ये है मौजू। कुल तो सूर है, सूर है जो कुल्लियत को बयान कर रहा है। तो कलिमा मुअरबा ये क्या हुआ? मौजू। तो देखो कलिमा और साथ उसकी एक सिफत भी है, क्या? मौरब। और मौरब होना ये कलिमा की अरजे जाती है, उसकी जाती सिफत है। तो इस मसले का मौजू क्या? कलिमा मौरबा। और कलिमा मौरबा क्या है? ये मुरक्कब है किस से? इस इलम का मौजू देखो कलीमा भी है और साथ उसकी एक आरज जाती भी है, तो इसका मौजू इस इलम के मौजू और उसकी एक आरज जाती से मुरक्कब है। सूरत समझ में आ रही है। और पांचवीं सूरत यह है कि इन मसाइल का जो मौजू है वो इस इलम के मौजू की कोई किस्म जो मुरक्कब होगी अपनी आरज जाती के साथ। जैसे उसकी मैंने मिसाल लिखवाई कि कुल्लुस मिन मौरबिन इम्मा मरफून औ मनसूबन औ मजरूरन, हर इसमें मौरब, देखो इसका मौजू क्या, इसमें मौरब, और इसम क्या है, इस इलम के मौजू की खास किस्म है, और साथ इसकी एक सिफत भी है, कौन सी सिफत, मौरब वाली, और ये इसकी क्या है, आरज जाती है। बात समझ में आ गई। तो किसी इलम के मसाइल का मौजू कितनी चीजें बन सकती हैं, पांच चीजें बन सकती हैं, या तो वो उसी इलम का मौजू जो है वो भी वही यहां मौजू बनेगा, या उस मौजू की कोई किस्म वो मौजू बनेगी, या उस मौजू की कोई आरजी जाती वो मौजू बनेगी, या वो मौजू जो है वो उस इलम के मौजू और उसकी आरज जाती से मुरक्कब होगा, या उस इलम के मौजू की कोई खास किस्म जो मुरक्कब होगी अपने अपनी आरज जाती से वो मौजू बनेगी। जी देखिए भाई किताब पर, तो कहते हैं वल मसाइल वही कजाया तुतलब फिल इल्मी, और तीसरी चीज जो है इलम के अज्जा में वो इलम के मसाइल हैं, वही कजाया तुतलब फिल इल्मी, और ये ऐसे कजिए हैं जो उस इलम में मतलूब होते हैं, व मौजूआतुहा, और इन मसाइल के जो मौजू है, इम्मा मौजू उल इल्मी बिआइन ही, या तो बिआइन ही उस इलम का मौजू होता है, जो उस इलम का मौजू होता है वो इन मसाइल का भी मौजू होता है, औ नौउ मिन्हू, या उस इलम के मौजू की कोई नौ कोई किस्म जो होती है वो मौजू होती है इनमें, औ अरज़ुन ज़ातीयुन लहू, या उस इलम के मौजू की कोई अरज़े ज़ाती जो है वो इन मसाइल का मौजू होती है, औ मुरक्कबुन, या इस इन मसाइल का मौजू मुरक्कब होता है, किससे, उस इलम के मौजू और उसके अरज़े जाती से, या इस इलम के मौजू की कोई किस्म और उसकी अरज़े जाती से। बात समझ में आ गई। वह महमूलातुहा उमूरुन खारिजतुन अनहा लाहिकतुन लहा लिजवातिहा। अच्छा, ये तो कजाया के मौजूआत की बात आ गई, मसाइल के मौजूआत, और महमूलात क्या होंगे, कजिए में एक मौजू होता है और एक महमूल, मौजूआत तो हमें आपने बता दिए, महमूलात क्या होंगे, तो वो महमूलात आपको बतलाएंगे, वो इनके आराज जातिया होंगे, क्या होंगे, आराज जातिया होंगे भाई। तो कहते हैं वह महमूलात हुआ, और उन मसाइल के जो महमूलात होंगे, उमूर उन खारिजतुन अनहा, ऐसे उमूर होंगे खारिजतुन अनहा जो उनकी हकीकत से खारिज होंगे, आवारिस है ना, जात में तो नहीं दाखिल, सिफात हैं भाई, बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे उमूर होंगे खारिजतुन अनहा जो उनसे खारिज होंगे, लाहिकतुन लहा और उनके साथ लाहिक होंगे, यानी उनको आरिज होंगे, उनको पेश आए होंगे, लिजवातिहा, किसके एतबार से, उनकी जात के एतबार से, तवज्जो है, महमूलात क्या होंगे उन मसाइल के, ऐसे उमूर जो उन मौजूआत की हकीकत से खारिज होंगे, तवज्जो है, उन मौजूआत की हकीकत से खारिज होंगे, यानी उनकी हकीकत का जुज नहीं होंगे, यानी उनकी सिफात होंगी, तो ऐसे उमूर जो उन उलूम के मौजूआत की हकीकत से खारिज होंगे और उनके साथ लाहिक होंगे, यानी उनके साथ आरिज होंगे, उनकी सिफात होंगे, लिजवातिहा, किस एतबार से, जात के एतबार से, तवज्जो है। फिर तर्जमा देखो, वह महमूलातुहा उमूर उन खारिजतुन अनहा लाहिकतुन लहा लिजवातिहा, और इनके जो महमूलात होंगे वो ऐसे उमूर होंगे खारिजतुन अनहा जो उनकी हकीकत से खारिज होंगे। देखिए भाई, मसलन मैंने आपको क्या लिखवाया, अलकलिमतु इम्मा मुआरबतुन औ मबनीयुन, मुझे बताओ मुआरब और मबनी होना क्या ये कलिमा की हकीकत में दाखिल है, नहीं, ये तो उसकी सिफत है, तो अलकलिमा हुआ मौजू और मुआरबतुन औ मबनीयुन ये क्या है, महमूल है, ये क्या है, महमूल, और ये महमूल कलिमे को हारिज होता है उसकी जात के एतबार से, यानी उसकी सिफत बनता है, उसकी हकीकत में दाखिल नहीं है भाई। तो ये जितनी मैंने मिसालें लिखवाई आप इनमें गौर कर लीजिएगा, ये जितने भी महमूल आए ये उनकी हकीकत से, मौजू की हकीकत से खारिज हैं और उनकी सिफात हैं भाई। तो कहते हैं वह महमूलातुहा उमूर उन खारिजतुन अनहा, और इनके जो महमूलात हैं इन मसाइल के वो ऐसे उमूर हैं जो इन मौजूआत से खारिज होते हैं, और लाहिकतुन लहा और इनके साथ मुत्तसिल होते हैं यानी इनको आरिज होते हैं, लिजवातिहा उनकी जात के एतबार से, उनकी जात के एतबार से उनको लाहिक होते हैं। तवज्जो है, यहां इश्काल होता है कि आपने हमें क्या बताया कि ये उनको लाहिक होते हैं किस एतबार से, जात के एतबार से, हालांकि आराज जातिया किनको कहते हैं, जो एक चीज को जात के एतबार से लाहिक हो उनको भी कहते हैं, और जो अमर मुसावी के वास्ते से लाहिक हो उनको भी आवारिज जातिया कहते हैं। बात समझ में आ गई। और यहां इन्होंने सिर्फ क्या कहा, जो उनको लाहिक होते हैं उनकी जात के एतबार से। मुझे बताइए, जहक इंसान को आरिस है उसकी जात के एतबार से या ताजुब के वास्ते से? ताजुब के वास्ते से। तो इसमें तो वो दोनों किस्में दाखिल नहीं हुई भाई। आराज जातीय किन को कहते हैं, जो मारूस को आरिस होते हैं बिला वास्ता या अमरे मुसावी के वास्ते से, और इन्होंने क्या कहा कि वो उनको लाहिक होते हैं उनकी जात के एतबार से। मालूम हुआ इसमें तो जो अमर मुसावी के वास्ते से आरिज हो वो आवारिज निकल गए भाई। इश्काल समझ में आ रहा है? फिर सुनो इश्काल। इन्होंने क्या कहा कि इन मसाइल के जो महमूलात होते हैं वो इन मौजूआत को आरिज होते हैं उनकी जात के एतबार से। भाई जात के एतबार से तो वो आवारिस आ गए सिर्फ जो बिला वास्ता हो, जिनको आरिज भी जात और आरज अव्वली कहते हैं वो सिर्फ दाखिल हुए, और वो आवारिस जो अमर मुसावी के जरिए लाहिक होते हैं वो भी तो आवारिज जातिया में दाखिल हैं, उनको भी तो शामिल करना चाहिए था, उनको यहां जिक्र नहीं किया। इश्काल समझ में आया। तो चुनांचे शारहीन फिर यहां ये एतराज उठाते हैं और कहते हैं कि या तो एक और कैद का भी एतबार कर लो, लिजवातिहा औ लिमा युसावीहा। महमूल वो है जो मौजू को लाहिक होता है उसकी जात के एतबार से, औ लिमा युसावीहा या ऐसी चीज के वास्ते से जो उस मौजू के मुसावी हो भाई। जबकि बाजों ने कहा कि इसी के अंदर लिजवातिहा से पहले मुजाफ महजूफ निकाल लें, ऐ लि इस्तेदादी जवातिहा, लि इस्तेदादी ये जो, यानी वो महमूलात वो हैं जो उनको लाहिक होते हैं मौजूआत को, लि इस्तेदादी जवातिहा इस वजह से कि उनकी जात में उनकी इस्तेदाद होती है। क्या होती है? तो लिजवातिहा से क्या मुराद, लिस्तेदादी जवातिहा, और इस्तेदाद से भी इस्तेदाद मखसूस खास इस्तेदाद मुराद है, आम इस्तेदाद भाई। देखिए आवारिज जातिया हैं, किसी चीज की सिफत बनते हैं बिला वास्ता या अमरे मुसावी के वास्ते से, ये उस चीज के आवारिज जातिया कहते हैं, और ये सिर्फ उस चीज की जात में ये इस्तेदाद है कि ये उनकी सिफत बन सकते हैं, और चीजों में ये इस्तेदाद नहीं है। जैसे नुतुक इंसान के अंदर इस्तेदाद है, नुतुक उसकी सिफत बन सकता है, तवज्जो है, ताजुब इंसान की सिफत बनता है बिला वास्ता, जहक इंसान की सिफत बनता है अमरे मुसावी यानी ताजुब के वास्ते से, नुतुक इंसान की सिफत बनता है अमरे मुसावी यानी नातिक के वास्ते से, तवज्जो है। फिर सुनो, ताजुब इंसान की सिफत बनता है बिला वास्ता, और नुतुक इंसान की सिफत बनता है नातिक के वास्ते से, और जहक इंसान की सिफत बनता है ताजुब के वास्ते से। तो इंसान की जात में इस्तेदाद है इसकी, यानी वो खास इस्तेदाद वो सिर्फ इंसान में मौजूद है कि ताजुब सिर्फ इसकी सिफत बनता है और किसी हैवान की सिफत नहीं बनता। इसी तरह ये जहक और नुतुक ये इंसान की जात में इसकी खास इस्तेदाद है और किसी में ये इस्तेदाद नहीं है। तो जब यहां इस्तेदाद का लफ्ज ले आएंगे, इस्तेदादी जवातिहा, इस वजह से उनकी, क्योंकि उनकी जात में इस्तेदाद होती है, और इस्तेदाद भी कौन सी मुराद है, खास इस्तेदाद। क्या है? यानी उनकी जात में वो मखसूस इस्तेआदाद होती है और चीजों में वो इस्तेआदाद नहीं होती। अब इसके अंदर आवारिस बिल जात भी दाखिल हो गए और आवारिस बिल वासिता बिल अम्रिल मुसावी भी दाखिल हो गए। इंसान को आरिस बिल जात क्या है? ताज्जुब। तो गोया इंसान की जात में सलाहियत है और किसी चीज में यह सलाहियत नहीं, तो इंसान के आवारिस जातिया में से है। इसी तरह इंसान की सिफत क्या बनती है? नुतुक। और इंसान की सिफत क्या बनती है? जहक। और किसी चीज की सिफत नहीं बनती। मालूम हुआ यह मखसूस इस्तेआदात सिर्फ किसके अंदर है? इंसान के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। तो जब लिजवातिहा से क्या मुराद? लिस्तेआदाद इन मखसूस इन लिजवातिहा, ऐसी मखसूस इस्तेआदाद जो इनकी जात में होती है। अब इसके अंदर दोनों दाखिल हो गए। आवारिस बिला वासिता उसकी भी सिर्फ इसी में इस्तेआदाद है, और आवारिस बवास्ते अमरे मुसावी वो भी दाखिल, क्योंकि उसकी भी सिर्फ इसी में इस्तेआदाद है और किसी चीज में इस्तेआदाद नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह महमूला तुहा उमूर उन खारिजतुन अनहा लाहिकतुन लहा लिजवातिहा, और उन मसाइल के जो महमूलात होते हैं वो ऐसे उमूर होते हैं जो उन मौजूआत से खारिज होते हैं और उन मौजूआत को लाहिक होते हैं उनकी जात के एतबार से। बात समझ में आ गई? हासिल कलाम यहां तक क्या हुआ कि उलूम मुदव्वना के अज्जा कितने हैं? तीन, मौजूआत, मबादी और मसाइल। मौजूआत क्या हैं? जिनके आवारिज जातिया से उन उलूम में बहस की जाए। और मबादी क्या हैं? वो कुछ चीजें जिन पर इस इलम के मसाइल मौकूफ होते हैं। ये मबादी आपको समझ में आएंगे तो मसाइल भी समझ में आएंगे, ये मबादी समझ में नहीं आएंगे तो मसाइल भी समझ में नहीं आएंगे। और ये मबादी दो किस्म के हो सकते हैं, तसव्वुर भी हो सकते हैं और तस्दीक भी। अगर ये तसव्वुर की कबील से हो तो इनको मबादी तसव्वुरिया कहते हैं, और अगर ये तस्दीक की कबील से हो तो इनको मबादी तस्दीकिया कहते हैं। और मबादी तसव्वुरिया में क्या बयान होता है? उस इलम के मौजूआत की तारीफ, और अगर मौजूआत मुरक्कब हैं तो उनके अज्जा की तारीफ, अगर वो मौजूआत मुरक्कब नहीं है तो फिर अज्जा की तारीफ भी नहीं होगी क्योंकि अज्जा ही नहीं है। तो मबादी तसव्वुरिया में क्या जिक्र होगा? मौजूआत की तारीफ और मौजूआत के अज्जा की तारीफ, और इसी तरह मौजूआत के आराज यानी सिफात जातिया की तारीफ भाई। और मबादी तस्दीकिया वो किसको कहते हैं? वो कुछ खास मुकदमात होते हैं, बदीही भी हो सकते हैं और नजरी भी हो सकते हैं, जिन पर उस इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं, यानी उन्हीं से इलम के दलाइल बनते हैं। अगर वो समझ में आएंगे तो इलम के दलाइल समझ में आएंगे और मसाइल उससे साबित होंगे। और तीसरी चीज है इलम के मसाइल, और इलम के जो मसाइल हैं वो कुछ ऐसे कजाया हैं जो उस इलम में मतलूब होते हैं, जिनकी खातिर उस फन को उस इलम को पढ़ा और पढ़ाया जाता है भाई। और यहां ये कीमती बात भी याद रखना, ये जो मबादी का यहां जिक्र आया, ये जो चाहे मबादी तसव्वुरिया हैं चाहे मबादी तस्दीकिया हैं, ये दोनों इलम के अंदर दाखिल होते हैं। किसके अंदर? ये इलम के अंदर दाखिल हैं, इलम के अज्जा हैं, इसलिए क्योंकि मबादी तसव्वुरिया किसका नाम था? इलम के मौजूआत की तारीफ, उनके अज्जा की तारीफ और उनके आराज की तारीफ है। मसलन मैं आपसे कहता हूं अलकलिमतु इम्मा इस्मुन औ फ़िअलुन औ हर्फुन, मसाइल में यह जिक्र होगा या नहीं? अलकलिमतु इम्मा इस्मुन औ फ़िअलुन औ हर्फुन, वहां अगर आपको अलकलिमा का ही पता नहीं होगा तो आपको यह बात समझ में आएगी? ये बात समझ में नहीं आएगी। या आगे चलकर जिक्र होगा अल इस्म इम्मा मुअरबुन औ मबनीयुन, तो वहां अल इस्म का ही आपको नहीं पता तो ये बात आपको समझ में आएगी। लिहाजा ये जो तारीफें की जाती हैं ये तारीफात उसके अंदर दाखिल हैं, तो ये तारीफात उस इलम के अंदर दाखिल हैं क्योंकि इलम के मसाइल का समझना इन पर मौकूफ है। अगर ये समझ में आएंगी तो इलम के मसाइल समझ में आएंगे, वरना तो समझ में ही नहीं आएंगे। अगर आपको कह दिया जाए अल इस्मु इम्मा मुअरबुन और मबनीयुन और आपको इस्म का ही पता ना हो तो ये बात आपको कतई तौर पर समझ में नहीं आएगी। तो लिहाजा ये जो मबादी तस्दीकिया और तसव्वुरिया हैं ये उस इलम में दाखिल होते हैं। इनका तसव्वुर आपको होगा तो आगे मसाइल के अंदर जब ये मौजू वगैरह बनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, और या मौजू बनेंगे या महमूल बनेंगे तो आपको इनकी समझ में आएगी। और नीज मबादी तस्दीकिया कुछ ऐसे मुकदमात होते हैं जो बदीही भी हो सकते हैं और नजरी भी हो सकते हैं, जिन पर मौकूफ होते हैं इलम के दलाइल, यानी इलम के दलाइल उनसे मुरक्कब होते हैं। तो जब इलम के दलाइल उनसे मुरक्कब होते हैं, उन्हीं से बनते हैं, तो मालूम हुआ यह भी इलम के अंदर दाखिल होते हैं भाई। तो ये मबादी जो जिक्र हुए ये इलम के अंदर दाखिल होते हैं भाई। आगे देखिए मतन भाई, वकद युकालुल मबादी लिमा युबदा बिही क़ब्ल अल मक़सूदी वल मुक़द्दिमातु लिमा यतवक़्क़फ़ु अलैहि शुरूउ बिवजह अल बसीरति व फ़र्त अर रग़बति का तारीफ़ अल इल्म व बयान ग़ायतिही व मौज़ूइही। यहां से मबादी की एक और तारीफ कर रहे हैं। बाज़ उलमा ने मबादी की और तारीफ की भाई, मबादी की और तारीफ की, जैसे ही आपको बतलाएंगे कि अल्लामा इब्ने हाजिब जो मुसन्निफ हैं काफिया के, उन्होंने मबादी की और तारीफ की है भाई। वो फरमाते हैं कि मबादी उन चीजों का नाम है जो मकसूद से पहले जिक्र की जाएं। मबादी किसका नाम? वो चीजें जो मकसूद से पहले जिक्र की जाएं, और इसी तरह मुकद्दमात जो हैं वो चीजें हैं जिन पर इलम को शुरू करना मौकूफ होता है, अला वजहिल बसीरत और शौक के साथ। इलम का शुरू करना अला वजहिल बसीरत और शौक के साथ शुरू करना, यह इन पर मौकूफ होता है। तवज्जो है। अल्लामा इब्ने हाजिब ने मबादी की और तारीफ की, वो फरमाते हैं कि मबादी कुछ वो बातें जिनको मकसूद से यानी मसाइल से पहले जिक्र किया जाए। तो यह आम तारीफ कर दी, ये मबादी इलम के अंदर हो सकता है दाखिल हो सकता है दाखिल ना हो, बस कुछ इब्तदाई बातें जो मकसूद से जो मसाइल से पहले जिक्र की जाएं उनको मबादी कहते हैं, यानी इब्तदाई बातें, इब्तदाई। और ये आम है, हो सकता है ये इब्तदाई बातें ऐसी हों जो इलम के अंदर दाखिल हों और हो सकता है दाखिल ना हो। तो बस आसान लफ्जों में उन्होंने कहा जो इब्तदाई बातें किसी इलम के अंदर जिक्र की जाती हैं वो मबादी हैं। इन्होंने तो बताया था मबादी वो तारीफात का नाम है और कुछ वो मुकदमात हैं जिनसे दलाइल बनते हैं, लेकिन अल्लामा इब्ने हाजिब क्या फरमाते हैं कि मबादी वो इब्तिदा में जो भी बातें जिक्र कर दी जाएं उनको मबादी कहते हैं और वो आम है। हो सकता है इलम में दाखिल हो सकता है इलम में दाखिल ना हो। और नीज मुकद्दिमात इन्होंने बताया, मुकद्दिमात वो हैं जो पीछे इन्होंने बताया, मुकद्दिमात किसका नाम है जिन पर उस इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं, यानी उन्हीं से इलम के दलाइल बनते हैं। जबकि अल्लामा इब्ने हाजिब फरमाते हैं कि मुकद्दिमात वो तस्दीकात हैं कि जिनको आप समझ लेंगे, जिनको आप जान लेंगे, तो आपको इलम में पूरी बसीरत हासिल होगी और आपको पूरा शौक होगा उस इलम का, और वो इस इलम की तारीफ मौजू और गरज व गायत है। आपको शुरू में इलम की तारीफ बतलाई जाती है कि ये इलम है भाई, जैसे मंतिक में बतलाते हैं आपको कि वो मंतिक वो इलम है जो नजर व फिक्र में गलती से हमारी हिफाजत करता है, और फिर बतलाते हैं मंतिक का मौजू मुआरिफ और हुज्जत हैं, और फिर आपको बतलाते हैं कि इसका गाया और मकसूद क्या है कि नजर व फिक्र में गलती से हिफाजत हो। तो ये चीजें जब तालिब इलम जान लेता है तो फिर उस इलम में उसको पूरी बसीरत होती है, दिल मुतमईन होता है और खूब शौक होता है, उसका फायदा उसके सामने आ जाता है कि ये हमें क्या करेगा, नजर व फिक्र में गलती से बचाएगा भाई। तो अल्लामा इब्ने हाजिब क्या फरमाते हैं कि मुकद्दमात इन तीन चीजों का नाम है, इलम की तारीफ मौजू और गरज व गायत, यानी उसका मकसद भाई। तो यहां मबादी की दूसरी तारीफ आ गई कि मबादी किसको कहते हैं, वो इब्तदाई बातें जो मकसूद से पहले जिक्र की जाएं वो सब मबादी हैं और वो आम है, हो सकता है इलम में दाखिल हो सकता है इलम से खारिज हों भाई। और मुकद्दमात, मुकद्दमात से मुराद वो बातें हैं जिनको जानने के बाद तालिब इलम को इलम के शुरू में पूरी बसीरत हासिल होती है, इलम शुरू करने में पूरी बसीरत हासिल होती है और उसमें शौक होता है। और वो मुकद्दमात क्या हैं, उस इलम की तारीफ मौजू और गरज व गायत। जब तालिब इलम को इलम की तारीफ का पता होगा कि ये क्या इलम है भाई, जब ये पता होगा इसका मौजू क्या है, किस बारे में यहां बातें होंगी, और जब इसके फायदे का और इसके मकसद का उसको पता होगा, उसको इलम को शुरू करने में बसीरत हासिल होगी और नीज उसको पूरा कामिल शौक होगा, और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो कामिल शौक नहीं होगा, पूरी बसीरत नहीं होगी। आपने उसको एक इलम पढ़ाना शुरू कर दिया, ना उसको उस इलम की तारीफ का पता, ना उसको मौजू का पता, ना उसके गरज व गायत का पता है, तो वो पूरी बसीरत उसको हासिल नहीं। वो चलता तो रहेगा लेकिन उसको पूरी बसीरत हासिल नहीं है, और नीज उसको पूरा शौक भी नहीं होगा। जब एक चीज के फायदे का और मकसद का ही उसको नहीं पता तो शौक किस तरह उसके दिल में पैदा होगा। भाई देखिए, वकद युकाल उल मबादी लिमा युबद उबी कबल अल मकसूदी, और कवि और तहकीक मबादी कहा जाता है उन चीजों को जिनसे इब्तिदा की जाती है मकसूद से पहले। वल मुकदमात, यह मुकदमात का आतफ है मबादी पर। वकद युकाल उल मबादी, वकद युकाल उल मुकदमात, और मुकदमात जो है वो कहा जाता है लीमा उन चीजों को, यतवक्कफु अलैहि शुरू, जिन पर मौकूफ हो शुरू करना, बिवजहिल बसीरति, बसीरत के तरीके पर, यानी पूरी समझ हासिल हो, व फरतिर रगबती, फर्त का माना ज्यादती, रगबत का माना शौक, व फरतिर रगबती और शौक की ज्यादती के साथ, बिवजहिल बसीरति व फरतिर रगबती, बसीरत के तरीके पर और शौक की ज्यादती के साथ, और ये मुताल्लिक है अशुरू से, बिवज हिल बसीरती व फरतिर रगबती, ये फरतिर रगबत का आतफ किस पर है, वजहिल बसीरत पर, और इन पर बा दाखिल, और ये जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक है शुरू से, शुरू मस्दर है ना। देखो, वल मुकदमात लिमा यतवक्कफु अलैहि शुरू बिवजहिल बसीरती व फरतिर रगबती, और मुकदमात वो चीजें हैं जिन पर मौकूफ है। क्या चीज मौकूफ है, तर्जमा आखिर से करेंगे, खूब शौक और बसीरत के तरीके पर शुरू करना। इधर देखिए, खूब शौक और बसीरत के तरीके पर शुरू करना इन मुकदमात पर मौकूफ है। शुरू करना नहीं मौकूफ, शुरू तो वैसे भी कर सकते हैं, शुरू करना किसके साथ, बसीरत के साथ और शौक के साथ, शौक और बसीरत के साथ शुरू करना वो इस मुकदमात पर मौकूफ होता है। का तारीफ इल इल्मी, जैसे कि उस इलम की तारीफ है, व बयान गायती ही, और जो उस इलम का गाया और मकसूद होता है, व मौजू ही, और उस इलम का मौजू जो है। तो गोया मबादी की दो तारीफें आपके सामने आ गई। पहले जो मबादी जिक्र हुए वो इलम के अंदर दाखिल हैं, क्योंकि उन पर इलम के मसाइल मौकूफ हैं, और ये जो मबादी आए ये वो इब्तिदाई बातें जो शुरू में जिक्र की जाएं ये आम है। हो सकता है इलम के अंदर दाखिल हो, क्योंकि हो सकता है इसमें ऐसी बातें जिक्र की जाएं कि ये इलम के अंदर दाखिल हों, और हो सकता है इसमें ऐसी बातें जिक्र की जाएं जो इलम के अंदर दाखिल ना हो। और मुकदमात इन्होंने बतलाया था पीछे के मुकदमात वो हैं जिन पर उस इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं, यानी उन्हीं से इलम के दलाइल बनते हैं, उन्हीं से मुरक्कब होते हैं। और यहां बतलाया कि नहीं, ये मुकदमात जो हैं ये उस इलम की तारीफ मौजू और गरज व गायत को कहते हैं कि जिन पर मौकूफ है उस इलम को खूब शौक और बसीरत के साथ शुरू करना, उस इलम को खूब शौक और बसीरत के साथ शुरू करना मौकूफ होता है इन चीजों पर। और याद रखिए, ये मुकदमात इलम से खारिज हैं। किसी इलम की तारीफ मौजू और गरज व गायत वो इस इलम से खारिज है। भाई खारिज है, उलमा फरमाते हैं ये जो मौजू और मबादी वगैरह इनको भी उलूम के अज्जा करार दिया तो कहते हैं ये सिर्फ एक जाहरी बात है, हकीकत में इलम का मौजू जो है उसके मसाइल होते हैं, यानी मसाइल के मजमूए का नाम इलम है। क्योंकि जो मबादी होते हैं कहते हैं ये वसाइल होते हैं, ये उस इलम तक पहुंचाते हैं, और वसीला शय जो है वह शय से खारिज होता है। और मौजू मौजू तो वह उसका नफ्स मौजू मुराद हो, नफ्स मौजू वो तो खुद आगे इलम के जो मसाइल जिक्र होंगे वहां वो मौजू उसके अंदर आ गया, भाई जिक्र हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, बात अच्छी तरह सारी समझ में आ गई, हल हो गया सारा। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।